आगे सबक देखिए भाई, किताबु तलाक, बाबु तलाक सुन्ना, قال الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة. भाई गुज़श्ता सबक में हमने किताबु तलाक शुरू की थी भाई, मैंने कुछ बहसें आपको लिखवाई और कुछ और बातें भी जिक्र की भाई. आपने पढ़ा कि तलाक जो है अरबी जुबान में तलाक का माना है हल्लुल कैद भाई, यानी बंद चीज को खोलना, और ये खोलना जो है ये हिस्सी भी हो सकता है और मानवी भी. हिस्सी जैसे हल्लुल उकदती यानी गिरा का खोलना, रस्सी का खोलना, और ये खोलना मानवी भी हो सकता है का हल्ल कैद निकाही, कैद निकाह को खोलना. और आपने तलाक की इस्तिलाही तारीख भी पढ़ी कि अत्तलाक हुआ इजालतुन निकाह और नुकसानी हिल्लिही बिलफ्जिन मखसूसिन, कि वो निकाह को जायल करना, खत्म करना, और नुकसानी हिल्लिही या उसकी हिल्लत को कम करना बिलफ्जिन मखसूसिन, मखसूस लफ्ज के साथ. इजाला निकाह यानी निकाह को खत्म करना, और नुकसानी हिल्लिही या उसकी हिल्लत को कम करना, यानी पहले तीन तलाकों का मालिक था खावंद तो एक तलाक दे देगा तो अब औरत जो है दो तलाकों के साथ हलाल है, देखो हिल्लत में कमी आ गई. फिर अगर एक और तलाक दे देगा तो फिर मजीद हिल्लत कम हो गई, अब औरत सिर्फ एक तलाक के साथ हलाल है. और अगर तीसरी तलाक भी दे देगा तो देखो निकाह पूरे तौर पर खत्म हो गया और अब ये औरत हलाल नहीं हो सकती इस शख्स के लिए जब तक ये औरत किसी और शख्स से निकाह ना कर ले. और फिर अगर उस शख्स ने कभी जिंदगी में इस औरत को तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया तो फिर ये औरत पहले खावन से निकाह कर सकती है, वरना और कोई सूरत नहीं पड़ी. और नीज ये तलाक आपने पढ़ा भी लफ्ज इन मखसूस, इन मखसूस लफ्ज के साथ होगी यानी तलाक के लफ्ज के साथ होगी. और आपने ये भी पढ़ा कि ये बच्चे और मजनून की तलाक वाकई नहीं होती. और दीगर अइमा जिक्र फरमाते हैं कि तलाक देने वाले का साहिब इख्तियार होना जरूरी है और मुकरह यानी मजबूर की तलाक वाकई नहीं होगी, लेकिन इंदल अहनाफ मुकरह की तलाक भी वाकई हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? ये सब मसले आगे साहिब हिदाया भी जिक्र फरमाएंगे भाई. और फिर आपने ये भी पढ़ा कि तलाक जो है इंदल अहनाफ जो है वो दो किस्म पर है, एक सुन्नी और एक बिदई. सुन्नी यानी जो सुन्नत तरीका है तलाक का, और बिदई यानी वो तरीका जो बिदअत है, जो हराम है, जो गुनाह है भाई, वो बिदई है. और तलाक सुन्नी जो है वो फिर दो किस्म पर है, एक हसन है और एक अहसन. हसन तलाक हसन ये है कि खावन जो है बीवी को तलाक दे तोहर में. पहली शर्त यह है कि तलाक किसमें दे? तोहर में दे, हैज में न दे. और नीज ये तोहर भी ऐसा हो जिसमें बीवी से जिमा न किया हो भाई. और तीसरी शर्त यह है कि इस ये तलाक भी रजई दे भाई. और चौथी शर्त यह है कि इस तोहर से माकबल वाले हैज में भी सोहबत न की हो. तो तलाक सुन्नी की कितनी शर्तें हैं? चार शर्तें हैं भाई. याद रखो ये शर्तें आपके जहन में होनी चाहिए. जब ये शर्तें आपके जहन में होंगी तो आप फौरन देखेंगे जहां जिस शर्त के मुखालफत हो जाए तो आप फौरन बतला सकते हैं कि ये तलाक बिदअत है भाई. मसलन तलाक हसन के अंदर कितनी शर्तें हैं? चार. पहली शर्त क्या? कि तोहर में तलाक दे. मालूम हुआ अगर हैज में तलाक देगा तो ये तलाक बिदअत है भाई, ये गुनाह है, हराम है भाई. और दूसरी शर्त क्या थी? कि उस तोहर में सोहबत ना की हो. अगर उस तोहर में सोहबत की है और फिर तलाक दे रहा है तो यह भी तलाक बिदअत है, हराम है, गुनाह है भाई. और नीज तलाक भी रजई होनी चाहिए भाई. लिहाजा अगर तलाक बाइन देगा तो बकौले अजहर यह भी क्या है? बिदअत है भाई. बात समझ में आ गई? ये भी हराम है, गुनाह है भाई. और अगर इस तोहर से माकबल वाले हैज में सोहबत की है तो फिर इस सूरत के अंदर भी ये तलाक क्या होगी, तलाक बिदअत। मैंने बताया कि हैज के अंदर सोहबत करना हराम है भाई, क्या है, हराम है, लेकिन बहरहाल कोई कर तो सकता है, इहतिमाल तो है, तो लिहाजा ये कैद भी उलमा ने जायद की कि जिस तोहर में तलाक दे रहा है उससे माकबल वाले हैज में भी सोहबत न की हो भाई। और फिर इसी तरह अगले तोहर में दूसरी तलाक दे इन्हीं मजकूरा शर्तों के साथ, और उससे अगले तोहर में तीसरी तलाक दे इन्हीं तमाम मजकूरा शर्तों के साथ, तो ये है तलाक हसन भाई। और ये भी याद रखना ये जो इद्दत है ये पहली तलाक से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब खावन तलाक रजई दे देता है तो इद्दत का शुमार शुरू हो जाता है। हां, रजई के अंदर खावन इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है, और इद्दत गुजर जाए तो औरत बाइना हो जाती है, निकाह टूट जाता है, उसके बाद औरत जहां चाहे निकाह कर सकती है, लेकिन इद्दत के अंदर खावन बगैर निकाह के भी रुजू कर सकता है। तो लिहाजा जब खावन ने पहली तलाक दी थी तो इद्दत शुरू हो गई, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, और तीसरी तलाक के बाद जैसे ही एक हैज गुजारेगी औरत तो तीन हैज पूरे हो गए और औरत खावन से जुदा हो जाएगी भाई। बात समझ में आ गई। जबकि तलाक अहसन के अंदर भी यही शराइत हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक शर्त जायद है, और वो ये कि सिर्फ एक ही तलाक पर इक्तफा कर ले, दूसरी और तीसरी तलाक न दे भाई। इसमें देखो बाद में भी गुंजाइश रहती है, तो इद्दत के अंदर खावंद रुजू कर सकता है, और इद्दत जब गुजर जाएगी तो इद्दत के बाद भी अगर खावंद इस औरत से निकाह करना चाहता है तो अभी भी गुंजाइश मौजूद है, ये दोबारा उससे निकाह कर ले। अलबत्ता अब इसके पास जिंदगी भर दो तलाकों का हक बाकी है, क्योंकि एक तलाक ये दे चुका है भाई। और मैंने आपको यह भी बतलाया कि यह जो तफसील है यह मदखूल बिहा औरत के अंदर है, यानी वो औरत जिसके साथ खावंद सोहबत कर चुका है। वजह यह कि जिस औरत के साथ खावंद सोहबत कर चुका है इद्दत उसी औरत पर आती है, जिस औरत से खावंद ने भी सोहबत ही नहीं की उसको जैसे ही खावंद तलाक देगा तो फौरन वो बाइना हो जाएगी, वो फौरन बाइना हो जाएगी, साथ ही निकाह टूट गया, खत्म हो गया, और इस औरत पर कोई इद्दत नहीं। वजह यह कि इद्दत औरत पर इसलिए वाजिब की जाती है कि खावन ने सोहबत की हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो औरत हामिला ना हो, औरत के पेट में खावन का बच्चा ना हो, तो लिहाजा इसलिए शरीयत ने इद्दत वाजिब की है। तीन हैज गुजार ले, जब बात कतई और यकीनी तौर पर पता चल गई कि औरत हामिला नहीं तो अब औरत जहां चाहे निकाह कर सकती है, लेकिन गैर मदखूल बिहा पर इद्दत नहीं है क्योंकि उसके साथ तो खामन ने सोहबत ही नहीं की, लिहाजा वहां तो हमल का कोई इहतमाल ही नहीं, लिहाजा वहां तलाक देते ही फौरन निकाह टूट गया और इस औरत पर कोई इद्दत नहीं, फौरन ही यह औरत आगे जहां चाहे निकाह कर सकती है। उसके बाद फिर मैंने आपको बतलाया था कि तलाक जो है वो दो किस्म पर है, एक तलाक रजई है और एक तलाक बाइन है। तलाक रजई वो है जिसके अंदर इद्दत के अंदर खावंद रुजू कर सकता है, और वो तलाक का लफ्ज खामंद कहे, मसलन खामंद अपनी बीवी से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो याद रखो ये तलाक रजई है। ये क्या है, तलाक रजई है, क्योंकि सिर्फ तलाक कहा खामंद ने, कोई और सिफत वगैरह साथ नहीं बढ़ाई, तो ये तलाक रजई है और इसमें खावंद इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है। लेकिन अगर रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई तो निकाह टूट जाएगा, अब खावंद फिर इस औरत को रखना चाहता है तो नया निकाह करना पड़ेगा, नया महर मुकरर करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तलाक बाइन है, जहां खावंद तलाक के साथ बाइन का लफ्ज बढ़ा देता है कि मैं तुम्हें तलाक बाइन देता हूं, यानी जुदा करने वाली तलाक देता हूं। याद रखो इस सूरत में निकाह टूट जाएगा, अब खावन इद्दत के अंदर रुजू नहीं कर सकता भाई। अब अगर इद्दत के अंदर भी औरत को रखना चाहता है तो नया निकाह करना पड़ेगा, और इद्दत के बाद भी चाहे तो निकाह कर सकता है इसी औरत से। तो ये औरत जिसको तलाक बाइन मिली है, ये अगर किसी और से निकाह करना चाहती है तो इद्दत के बाद ही करना पड़ेगी, लेकिन अगर इसी खावन से निकाह करना चाहती है तो इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकती है और इद्दत के बाद भी निकाह कर सकती है, तो नया निकाह करना पड़ेगा और नया महर मुकरर करना पड़ेगा। तो तलाक बाइन वो है जिसके अंदर तलाक के साथ खावन बाइन वगैरह का लफ्ज़ बढ़ा दे या कोई और सिफत बढ़ा दे कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी तलाक देता हूं, मैं तुम्हें पहाड़ जितनी तलाक देता हूं, मैं तुम्हें खूब लंबी चौड़ी तलाक देता हूं, तो इस तरह का लफ्ज़ जब खावन साथ बढ़ाएगा तो यह तलाक बाइन हो जाएगी, अब रुजू नहीं कर सकता। और फिर ये जो तलाक रजई है, याद रखो दो तलाकें जो हैं वो रजई हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक तलाक दी, इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है खावन, और मैंने बताया रुजू जुबान के जरिए भी कह सकता है मैं रुजू करता हूं, और अपने अमल के जरिए भी रुजू कर सकता है, मसलन बीवी का बोसा लिया या उससे सोहबत कर ली, यानी कोई ऐसा काम किया जो बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ जायज नहीं, तो उसका यह अमल बतला रहा है कि इसको अपनी बीवी रखना चाहता है, यह रुजू कर रहा है, क्योंकि इसका यह अमल तो गैर बीवी के साथ जायज नहीं था, तो लिहाजा यह मालूम हो इसी को बीवी बनाकर रखना चाहता है, यह रुजू कर रहा है, तो लिहाजा इस सूरत में रुजू हो जाएगा। फिर दोबारा किसी वक्त उस खामन ने फिर तलाक दे दी तो फिर भी इद्दत के अंदर रुजू कर सकता है, लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी तो फिर अब रुजू नहीं हो सकता। अब ये जो तीन तलाकें दे दी इनको तलाक मुगल्लजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तलाक मुगल्लजा, यानी सख्त तलाक, सख्त तलाक। तो ये तलाक मुगल्लजा है भाई, अब औरत हराम हो गई खावंद के लिए भाई, और अब दोबारा निकाह की कोई सूरत नहीं क्योंकि तीन तलाकें दे चुका है। हां, इस औरत ने अगर किसी और शख्स से निकाह किया और फिर उस शख्स ने जिंदगी में कभी तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया तो फिर पहला खावन दोबारा इससे निकाह कर सकता है, वरना वैसे और कोई सूरत नहीं। तो ये तो थी तलाक रजई और तलाक बाइन बई। उसके बाद मैंने आपको बतलाया था कि अल्फाज के एतबार से जिन लफ्जों से तलाक दी जाए उन अल्फाज के एतबार से तलाक दो किस्म पर है, एक सरीह है और एक किनाया है। तलाक सरीह वो है, सरीह का माना साफ भाई, साफ यानी वाजह लफ्जों में जो तलाक दी जाए इसको सरीह कहते हैं। मसलन खामन ने अपनी बीवी से कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, देखो ये साफ लफ्जों में तलाक दे रहा है, यहां और कोई माना नहीं इस कलाम का। तो सरीह किसे कहते हैं? साफ लफ्जों में तलाक देना। और किनाया कहते हैं कि गोलमोल लफ्जों के साथ तलाक देना, यानी जिसमें तलाक का माना भी निकलता हो और गैर तलाक का माना भी निकलता हो भाई। और मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है तू जुदा है, तू जुदा है, अब इसका यह माना भी निकल सकता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है तू मुझसे जुदा है, और इसका यह माना भी निकल सकता है कि तू और औरतों से जुदा है, तेरे जैसी सिफात और किसी औरत में नहीं। तो देखो दोनों माना निकल सकते हैं, मौका महल के मुताबिक जो भी माना बनता हो आप गौर कर लेंगे। तो तलाक किनाया में तलाक का भी इहतमाल होगा और गैर तलाक का भी इहतमाल होगा। फिर याद रखो ये सरीह है या किनाया, दोनों की दो दो किस्में हैं। सरीह या तो रजई होगी या बाइन होगी। सरीह हो यानी तलाक का लफ्ज हो और रजई हो, मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो यह सरीह है और नीज ये रजई है क्योंकि कोई और सिफत खावंद ने नहीं बढ़ाई, तो ये तलाके सरीह रजई है। और अगर खावंद ने कहा मैं तुम्हें पहाड़ जैसी तलाक देता हूं या मैं तुम्हें तलाके बाइन देता हूं, तो देखो तलाक का लफ्ज ला रहा है खावंद, इसका और कोई माना नहीं, वो तलाक ही दे रहा है, लेकिन ये कौन सी सरीह है? बाइन है, बाइन है, तवज्जो है। इसी तरह किनाया भी याद रखना, कभी रजई होगा और कभी बाइन। किनाया रजाई जिसके अंदर इद्दत के अंदर रुजू हो सके, किनाया बाइन जिसमें इद्दत के अंदर भी रुजू नहीं हो सकता भाई। और याद रखो उलमा जिक्र फरमाते हैं कि पूरे कलाम अरब में तीन किनायात ऐसे हैं जो जिनसे तलाके रजाई होती है, बाकी तमाम किनायात से तलाके बाइन होती है। तो सिर्फ तीन किनायात हैं, आगे साहिब हिदायत जिक्र करेंगे भाई, तीन किनायात हैं जो रजई हैं, बाकी सब किनायात बाइन हैं भाई। तो मालूम हुआ तलाक की कुल चार किस्में बन गईं, सरीह रजई, सरीह बाइन, किनाया रजई, किनाया बाइन। फिर मैंने आपको बतलाया था कि अगर खावन इन चार तलाकों में से कोई एक तलाक देता है और फिर अगली तलाक भी इद्दत के अंदर देता है तो क्या वो दूसरी तलाक पहली तलाक के साथ मिलेगी, तलाकें दो हो जाएंगी, या दूसरी तलाक लग्व चली जाएगी? तवज्जो है, एक तलाक दे चुका है इन चार में से कोई एक, या सरीह रजई दी है या सरीह बाइन दी है, या किनाया रजई दी है या किनाया बाइन, उसके बाद औरत इद्दत गुजार रही है और इद्दत के अंदर खावन एक और तलाक दे देता है, इन्हीं चार में से कोई एक देता है, तो फिर क्या वो दूसरी तलाक भी शुमार की जाएगी? अब इस औरत को दो तलाकें हो गई, या दूसरी लगव चली गई। जैसे देखो ना तलाक हसन का क्या तरीका था, एक रजई तलाक देता था ऐसे तोहर में जिसमें सोहबत न की हो और उसे माकबल के हैज में भी सोहबत न की हो, तो एक तलाक देता था। फिर इद्दत चल रही है, अभी इद्दत शुरू हो गई, अगले तोहर में एक और तलाक दे दी, देखो ये दूसरी भी पहली के साथ मिल गई, दो हो गई तलाकें। फिर अभी इद्दत चल रही है, अगला तोहर आया तो फिर एक तीसरी तलाक दे दी, तो ये देखो ये भी उसके साथ मिल गई, तो कुल कितनी तलाकें हो गई, तीन हो गई। और इद्दत जैसे ही गुजारेगी ये औरत अब तलाक मुगल्लजा के साथ खावन से जुदा हुई है, अब दोबारा निकाह की कोई सूरत नहीं इल्ला ये कि किसी और खावन से निकाह करे और फिर उसके बाद वो तलाक दे या उसका इंतकाल हो जाए तो फिर पहले खावन से निकाह कर सकती है। तवज्जो है, तो तलाक हसन में आप देख रहे हैं इद्दत के अंदर खावन दूसरी तलाक दे रहा है, तीसरी तलाक दे रहा है, और वो तलाकें पहली तलाक के साथ मिलती जा रही हैं। तलाकें पहले एक थी, फिर दो हुई, फिर तीन हो गई, तवज्जो है। तो लिहाजा अगर खावन एक तलाक पहले दे चुका है, सरीह रजई सरीह बाइन किनाया रजई किनाया बाइन, इनमें से कोई एक तलाक खावन ने दे दी, उसके बाद इद्दत के अंदर वो दूसरी तलाक देता है या तीसरी तलाक देता है, तो वो अगली तलाक पहली के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? बात सूरतें ऐसी हैं कि वो दूसरी तलाक लग्व चली जाएगी, शरीयत उसका एतबार ही नहीं करती, और बाद सूरतों में दूसरी तलाक पहली के साथ मिलेगी और एक के बजाय तलाकें दो हो जाएंगी या फिर तीन हो जाएंगी। तो वो कौन सी सूरत है? मैंने बताया था यहां कुल 16 सूरतें बनती हैं। कितनी? 16, क्योंकि पहली तलाक तो इन चार में से कोई एक होगी, या तलाक या सरीह रजई होगी या सरीह बाइन या किनाया रजई या किनाया बाइन। दूसरी तलाक भी मसलन अगर पहली सरीह रजई है, पहली कौन सी है? सरी हरजई है, तो दूसरी फिर इन चारों में से कोई एक हो सकती है, दूसरी भी सरी हरजई भी हो सकती है या सरी बाइन भी हो सकती है, किनाया रजई भी या किनाया बाइन भी। तो देखो कुल चार सूरतें बन गई दूसरी तलाक के एतबार से, पहली कौन सी? सरी हरजई, और दूसरी में चार सूरतें। फिर दूसरी सूरत ले लो, अगर पहली सरी बाइन है, कौन सी है? तो सरीह बाइन है अगर पहली, तो दूसरी में फिर वही चार सूरतें, दूसरी या सरीह रजई होगी या सरीह बाइन होगी या किनाया रजई या किनाया बाइन। तो इस सरीह बाइन में भी चार सूरतें बन गई। अगर पहली तलाक सरीह रजई हो तो दूसरी तलाक तो चार में से एक हो सकती है, तो देखो चार सूरतें सरीह रजई में बन गई। तो अगर पहली तलाक सरीह बाइन हो तो दूसरी में फिर चार सूरतें, कुल तो ये गोया चार सूरतें ये हो गई। अगर पहली तलाक किनाया रजई हो तो फिर अगली चार जो हैं दूसरी में वो चारों सूरतें, या सरीह रजई होगी या सरीह बाइन या किनाया रजई या किनाया बाइन, तो यहां भी चार सूरतें। और अगर पहली तलाक किनाया बाइन हो तो भी अगली तलाक में वही चारों सूरतें। तो पहली जो भी तलाक शुमार करें हर एक में दूसरी तलाक के अंदर चार चार सूरतें बन रही हैं, तो कुल ये 16 सूरतें बन गई। और इन 16 में से कौन सी दूसरी तलाक पहली से मिलेगी और कौन सी नहीं, तो फुकाहा इसके लिए एक जाब्ता बयान फरमाते हैं कि असरीह यलहकुस सरीह वलबाइना वलबाइनु ला यलहकुल बाइना। असरीह यलहकुस सरीह वलबाइना, यानी अगर दूसरी तलाक सरीह है तो वो माकबल वाली सरीह के साथ भी मिलेगी और बाइन के साथ भी। असरीह के सरीह जो है यल, यानी ये दूसरी सरीह, दूसरी सरीह यल हक उस सरीह वल बाइन, वो माकबल वाली सरीह के साथ भी मिल जाएगी और माकबल वाली बाइन के साथ भी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ पहली तलाक जो भी हो दूसरी अगर सरीह है, चाहे सरीह रजई है चाहे सरीह बाइन है तो सरीह, वो दूसरी पहली के साथ मिल जाएगी। वल बाइन उलाय अलहकुल बाइना, और बाइन बाइन के साथ नहीं मिलेगी। फुकाहा फरमाते हैं इस बाइन से मुराद किनाया बाइन है। बाइन तो दो किस्म की है ना, एक सरीह बाइन और एक किनाया बाइन। तो ये जो बाइन का लफ्ज आया अल बाइन उलाय अलहकुल बाइना, तो ये जो पहला बाइन का लफ्ज आया इसे किनाया बाइन मुराद है। किनाया बाइन बाइन के साथ नहीं मिलेगी। अगर दूसरी तलाक क्या है? किनाया बाइन, तो वो पहली बाइन के साथ नहीं मिलेगी, चाहे पहली बाइन सरीह बाइन हो चाहे किनाया बाइन हो। मालूम है 16 में से सिर्फ ये दो सूरतें हैं कि पहली तलाक सरीह बाइन और दूसरी किनाया बाइन, तो ये किनाया बाइन लग्व चली जाएगी, या पहली किनाया बाइन है और दूसरी भी किनाया बाइन है तो ये दूसरी किनाया बाइन लग्व चली जाएगी। तो इन सूरतों में एक ही तलाक हुई है, दूसरी हुई ही नहीं, जबकि बाकी 16 सूरतों के अंदर दूसरी तलाक पहली के साथ मिल जाएगी और तलाकों की तादाद बढ़कर 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और 19 तलाकों वाला मसला भी आपने पढ़ा था गुज़श्ता सबक में। याद रखो अइमा अरबा और तमाम फुकहा के नजदीक एक ही मजलिस में 3 तलाकें वाकई हो सकती हैं। अगरचे यह है बिदअत तरीका, गुना है, हराम है, लेकिन बहरहाल एक मजलिस में 3 तलाकें दी जाएंगी तो तीनों वाकई हो जाएंगी। चाहे एक ही लफ्ज से 3 तलाकें दी जाए, चाहे अलग अलग लफ्ज जिक्र करें, अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, तो एक मजलिस में 3 तलाकें हो सकती हैं। जबकि पूरी उम्मत में से सिर्फ इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला और उनके शागिर्द अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमहुल्ला और इसी तरह ज़माने हाल के गैर मुकल्लिदीन जो हैं, इनके नजदीक एक मजलिस में 3 तलाकें हो ही नहीं सकती। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला, याद रखो, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और अजीम मुजाहिद गुजरे हैं, लेकिन बहरहाल वो मुताखिरीन में से हैं। भाई वो 7वीं-8वीं सदी हिजरी में आए हैं, 7वीं-8वीं सदी हिजरी में गुजरे हैं, तो ये मुताखिरीन में से हैं और इनसे माकबल तमाम अइमा फुकहा वगैरह सबका इत्तेफाक कि एक मजलिस में 3 तलाकें दी जाएं, तो अगरचे ये बिदअत है, हराम है, गुना है, लेकिन वाकई हो जाएंगी। जबकि इमाम इब्ने तैमिया, उनके शागिर्द अल्लामा इब्ने कय्यिम और ज़माने हाल के गैर मुकल्लिदीन कहते हैं नहीं, एक मजलिस में 3 तलाकें हो ही नहीं सकती। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबु तलाक, बाबु तलाक सुन्नह, ये बाब है तलाक सुन्नत के बयान में। काला अत तलाक अला सलासती औजुहिन, साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि तलाक जो है 3 किस्म पर है। हसनु व अहसनु व बिदईयुन, एक तलाक हसन है, एक अहसन है और एक बिदई है। हसन यानी अच्छी तलाक, अहसन जो ज्यादा अच्छी है भाई, और बिदई जो बिदअत है भाई। तो फरमाते हैं तलाक 3 किस्म पर है, हसनु व अहसनु व बिदईयुन। फल अहसनु तलाक अहसन ये है, अयुतल्लिकर रजुलु इम्रअतहु तत्लीकतन वाहिदा, कि तलाक दे कोई शख्स अपनी बीवी को एक ही तलाक। फी तोहरिन लम युजामिअहा फीही, तोहरिन नकेरा है और लम युजामिअ उसके बाद फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आया तो उसकी सिफत बनता है। और फिर इस सूरत में तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। फल अहसन, तो तलाक अहसन यह है, अयुतल्लिकर रजुलु इम्रअतहु तत्लीकतन वाहिदा, कि कोई शख्स अपनी बीवी को एक ही तलाक दे। फी तोहरिन लम युजामिअहा फीही, ऐसे तोहर में जिसके अंदर उसने उसे जिमा न किया हो। वयतरुकहा, और फिर इसको छोड़ दे, यानी और तलाकें न दे, इसी तरह अपने हाल पर छोड़ दे। हत्ता तन कजिया इद्दतुहा, यहां तक कि इस औरत की इद्दत गुजर जाए। एक तलाक रजई दी है ऐसे तोहर में जिसमें सोहबत नहीं की, और फिर इसी तरह औरत को अपने हाल पर छोड़ दे, यानी रुजू न करे, और फिर जब यह इद्दत गुजरेगी यानी 3 हैज गुजर जाएंगे तो औरत बाइना हो जाएगी, अब वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। तो ये तलाक अहसन है, लिअन्न सहाबत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कानू यस्तहिब्बून अल्ला यज़ीदू फित तलाक अला वाहिदा, इसलिए क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो थे, कानू यस्तहिब्बून, वो पसंद करते थे, अल्ला यज़ीदू फित तलाक अला वाहिदा, कि वो तलाक में न बढ़ाएं एक पर, यानी एक से ज्यादा तलाक न दें, एक पर ही क्या कर लें, इक्तिफा कर लें। भाई एक ने भी वही काम करना है, 3 तलाकों ने भी वही काम करना है, एक से भी निकाह टूट जाएगा और 3 से भी निकाह टूटेगा। जमाने हाल में अक्सर लोग देखो, वो चूंकि दीनी मसाइल का इलम नहीं है, वो बीवी को 3 तलाकें दे देते हैं, और 3 तलाकें तो ये तो तलाक मुगल्लसा है, इसके बाद तो अब दोबारा मियां बीवी के मिलने की कोई सूरत नहीं है, इल्ला ये कि किसी और से औरत निकाह करे और फिर वो सोहबत भी करे और फिर उस खावंद का इंतकाल हो या वो तलाक दे दे, तो फिर वो पहले खावंद के लिए हलाल होगी। तो देखो जमाने हाल के अंदर आप कितना ही देख लोगों को देखते हैं, बीवी को 3 तलाकें दे दी और बाद में अब अफसोस कर रहे हैं और फिर वो हलाले को जरिया बनाते हैं। तो देखो शरई मसाइल का इलम ना होने का कितना नुकसान। भाई खावंद अगर एक तलाक दे उसने भी निकाह तोड़ना है, और तीन तलाकें देगा तो भी उसने निकाह तोड़ना है, लेकिन एक तलाक दे देगा तो उससे काम पूरा हो गया, निकाह टूट गया। और अगर नदामत हो तो बाद में दोबारा निकाह करना चाहता है कर सकता है, अब उसके पास दो तलाकों का हक बाकी रहेगा, लेकिन तीन के बाद तो दोबारा निकाह की कोई सूरत नहीं रहती। तो कहते हैं ले अन्न सहाबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कानू यस्तहिब्बून अन ला यज़ीदू फी तलाक अला वाहिदा, सहाबा पसंद करते थे कि वो ज्यादा ना करें तलाक में एक पर, हत्ता तनक़ज़ियल इद्दतु, यहां तक कि उसकी इद्दत गुजर जाए। व अन्न हादा अफ़ज़लु इंदहुम मिन अन युतल्लिक़ अर्रजुलु सलासन इंद कुल्लि तुहरिन वाहिदा। तो एक सूरत यह थी कि इंसान एक तलाक दे दे और फिर इद्दत गुजरने दे, इद्दत के गुजरते ही औरत बाइना हो जाएगी, जहां चाहे निकाह कर सकती है। और एक सूरत यह है कि हर तोहर में एक एक तलाक देता जाए, हर तोहर में एक एक, ये तलाक हसन, पहले तो अहसन है, तलाक अहसन क्या, सिर्फ एक तलाक पर इक्तफा किया और इद्दत गुजरने दी। और तलाक हसन यह है कि एक एक तलाक दे हर ऐसे तोहर में जिसमें खावन ने बीवी से सोहबत नहीं की और उसे माकबल वाले हैज में भी सोहबत नहीं की। तो देखो ये तीन तलाकें देगा ये भी सुन्नत तरीका है, और एक तलाक देगा ये भी सुन्नत है, अलबत्ता एक तलाक देना वो अहसन है, वो अच्छी है, क्योंकि उसमें बाद में फिर दोबारा निकाह की गुंजाइश रहती है। तो सहाबा एक तलाक पर इक्तफा करते थे, यह पसंद था उनको, और नीस उनके नजदीक तीन तलाकें देना तीन तोहरों में इसके मुकाबले में यह अफजल था उनके नजदीक कि सिर्फ एक ही तलाक पर इक्तफा कर लिया जाए। यही बयान कर रहे हैं, वह अन्न हादा अफजल इंदहुम, और उनके नजदीक यह अफजल था, मीन अन युतल्लिक अर्रजुल सलासन, इसके मुकाबले में कि आदमी तीन तलाकें दे, इंद कुल तोहर वाहिदतन, हर तोहर में एक, हर तोहर में एक तलाक देता रहे आदमी, इसके मुकाबले में यह अफजल था उनके नजदीक कि एक ही तलाक पर इक्तफा कर ले। बात समझ में आ गई। वली अन्नहु अबअदु मिनन नदामती, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो एक तलाक है ये नदामत से ज्यादा दूर है, ये अहसन तलाक क्या है, नदामत से ज्यादा दूर है, क्योंकि अगर तीन दे देगा फिर तो बाद में कोई गुंजाइश ना रही, फिर निकाह नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक दे दी है निकाह टूट गया है लेकिन बाद में खावन को नदामत हुई और वो फिर इसी औरत से निकाह करना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं है, फिर निकाह कर ले। अब अलबत्ता इसके पास दो तलाकों का हक है तमाम जिंदगी भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु अबअदु मिनन नदामती, और इसलिए क्योंकि ये तलाक अहसन जो है यह नदामत से दूर है। व अकल्लु ज़ररन बिल मरअती, और नीज इसमें औरत का कम नुकसान है, यह अकल है ज़ररन बैतबार नुकसान के, बिल मरअती औरत के साथ, औरत के लिए इसमें कम नुकसान है भाई तलाक अहसन में। वजह यह कि तलाक हसन के अंदर वो तीन तोहरों में तीन तलाकें दे रहा है, तो वहां पर हो सकता है वो किसी वक्त अगर उसने रुजू कर लिया, उसका इरादा मैं तीन दूंगा, तो हो सकता है ये दरमियान में किसी वक्त क्या कर ले, रुजू कर ले और फिर दोबारा अगली बाकी तलाकें दे, तो देखो इस तरह औरत पर इद्दत लंबी हो जाएगी, औरत पर इद्दत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही तलाक देगा तो वो तीन हैज गुजारेगी और फिर इद्दत पूरी हो जाएगी। तो ये माना है वह अकल्लु ज़ररन बिल मरअती, और नीज इसलिए क्योंकि तलाक अहसन जो है ये औरत के लिए नुकसान के एतबार से अकल है। वला खिलाफ लि अहदिन फिल कराहती, और किसी एक का भी इख्तिलाफ नहीं है फिल कराहती, कराहत के सिलसिले में, यानी तलाक अहसन के गैर मकरूह होने में किसी एक का भी इख्तिलाफ नहीं है, सबके नजदीक पसंदीदा तरीका है तलाक का, यानी कोई फकीह भी इसकी कराहत का कायल नहीं, यानी इसकी कराहत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, यानी सबके नजदीक ये गैर मकरूह है। यह माना है वला खिलाफ लि अहदिन फिल कराहती, और किसी एक का भी इख्तिलाफ नहीं है इसमें कराहत के अंदर कि इसमें कराहत नहीं है। बात समझ में आ गई, तलाक अहसन में किसी के नजदीक भी कराहत नहीं है भाई। वल हसन हुआ तलाक उस सुन्नति, और तलाक हसन जो है वो तलाक सुन्नत है, भाई मैंने आपको क्या बतलाया था, तलाक दो किस्म पर है, एक सुन्नी और एक बिदई, और सुन्नी जो तलाक का सुन्नत तरीका है वो फिर दो किस्म पर है, या हसन या अहसन। तो मैंने आपको बताया कि हसन और अहसन दोनों तलाक सुन्नत हैं, लेकिन साहिबे हिदायत फरमा रहे हैं वल हसन हुआ तलाक सुन्नती, कि हसन जो है ये तलाक सुन्नत है
जी।
तो मैंने तो बताया दोनों तलाक सुन्नत हैं, और साहिब हिदायत फरमा रहे हसन जो है वो तलाक सुन्नत है। तो याद रखना भाई, हमारे नजदीक दोनों ही तलाक सुन्नत हैं, हसन भी और अहसन भी, लेकिन हसन को बिलखसूस साहिब हिदाया ने तलाक सुन्नत कहा। वजह यह कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसमें इख्तिलाफ फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं सिर्फ अहसन सुन्नत है, हसन सुन्नत नहीं, बल्कि यह बिदअत है और यह गुनाह है भाई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह तलाक हसन को क्या करार देते हैं, बिदअत करार देते हैं। तो साहिब हिदाया यहां इमाम मालिक का रद्द करना चाहते हैं, इसलिए कहा वल हसन हुआ तलाक सुन्नति, के हसन वो भी क्या है, तलाक सुन्नत है। तो हसन को तलाक सुन्नत क्यों करार दिया, इमाम मालिक का रद्द करने के लिए, कि वो इसको बिदअत कहते हैं भाई, वरना दोनों सुन्नत हैं हमारे नजदीक। अहसन उसके बारे में तो आपने पढ़ लिया, कोई एक फकीह भी उसमें इख्तिलाफ नहीं करता, कोई एक फकीह भी उसको मकरूह नहीं कहता भाई। तो कहते हैं वल हसन हुआ तलाक सुन्नति, और हसन जो है वो तलाक सुन्नत है। वह हुआ अन युतल्लिकल मदखूल बिहा सलासन फी सलासती अतहारिन, और वो ये कि तलाक दे मदखूल बिहा, यानी वो औरत जिसके साथ खावन सोहबत कर चुका है उसको, बीवी को खावन तलाक दे सलासन तीन तलाकें, फी सलासती अतहारिन तीन तोहरों में। वकाल मालिकुन रहमहुल्लाहु ताला इन्नहु बिदअतुन, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक हसन जो है ये भी बिदअत है। वो इस तरीके से तलाक को भी बिदअत करार देते हैं कि तीन तोहरों में तीन तलाकें दे। वला युबाहु इल्ला वाहिदतुन, और उनके नजदीक की तलाक मुबाह नहीं है मगर एक ही, सिर्फ एक तलाक मुबाह है, एक तलाक मुबाह है, क्योंकि मैंने बताया एक ने भी निकाह तोड़ना है, दो और तीन ने भी क्या करना है, निकाह तोड़ना है। तो लिहाजा जब एक से हाजत पूरी हो जाती है तो दो और तीन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं वला युबाहु इल्ला वाहिदतुन, और मुबाह यानी जायज नहीं है मगर एक ही तलाक। लिअन्न अल असल फी तलाक हुवल हज़्र, इसलिए क्योंकि असल जो है तलाक के अंदर हुवल हज़्र, हज़्र ज़ुआ के साथ है भाई, तवाज़ुआ तलाक के अंदर असल जो है हज़्र है, यानी मुमानअत है। शरअन तलाक ममनू है भाई, आपने पढ़ा भाई अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे ज्यादा मबगूज तलाक है, सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक है भाई। तो लिहाजा असल तो तलाक के अंदर मुमानअत है, क्या है, मुमानअत है, शरअन इसकी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि यह ताल्लुक को तोड़ने वाली चीज है। लेकिन चूंकि इंसान बाज औकात औरत से छुटकारा पाना चाहता है, औरत इतनी बद अखलाक है या इतनी बदजुबान है या कोई और ऐसी कभी आदत है कि उसके साथ गुजारा ही नहीं हो सकता
जी।
तो तलाक के अंदर तो असल यह है कि यह शरअन ममनू है, लेकिन बाज औकात इंसान को हाजत और जरूरत पेश आ जाती है, वह औरत से छुटकारा पाना चाहता है, तो इस जरूरत और हाजत की वजह से शरीयत तलाक की इजाजत देती है, वरना तो फी नफसी ही तलाक की इजाजत नहीं है क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ने वाली चीज है भाई। लेकिन बाज़ औकात इंसान एक औरत की आदत से या उसकी बातों से, उसकी जुबानी वगैरह से इतना ज्यादा तंग आ जाता है कि उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो इंसान को हाजत पेश आ जाती है छुटकारे की, और हाजत की वजह से शरीयत फिर उसको तलाक की इजाजत देती है। और यह हाजत एक तलाक से पूरी हो गई, एक तलाक दे देगा तो जुदाई आ जाएगी या नहीं, एक तलाक दे देगा और फिर इद्दत गुजरने दे, रुजू न करे, आराम से जुदाई आ जाएगी भाई। तो लिहाजा चूंकि बाज औकात इंसान मोहताज हो जाता है बीवी से छुटकारा पाने का, लिहाजा इस जरूरत और हाजत की वजह से शरीयत उसे तलाक की इजाजत देती है
जी।
आपने फिका का जाब्ता पढ़ा है, अज जरूरत तुबीहुल महजूरात, महजूरात में मैंने बताया था यहां ये ज़ा के साथ है, महजूरात محظور کس کو کہتے ہیں؟ ممنوع کو. الضرورت تبیح المحظورات, کہ شریعت ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہے. تو یہاں پر بھی طلاق حرام ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دے دی کہ انسان بعض اوقات بیوی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ, اس لیے کیونکہ اصل جو ہے طلاق کے اندر وہ ممانعت ہے. میری کتاب میں بین السطور حدیث بھی ذکر ہے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا ولا تطلقوا, کہ نکاح کرو اور طلاقیں نہ دو. دیکھا منع کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ, کہ اصل جو ہے طلاق کے اندر وہ ممانعت ہے. وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْخَلَاصِ, اور اباحت یعنی طلاق کا مباح ہونا ہوتا ہے, یعنی طلاق کی جو اجازت ہوتی ہے لِحَاجَةِ الْخَلَاصِ, وہ چھٹکارا پانے کی حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے. وَقَدْ اِنْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ, اور یہ حاجت تو اٹھ جاتی ہے ایک طلاق کے ذریعے ہی, یہ حاجت تو پوری ہو جاتی ہے ایک طلاق کے ذریعے ہی, لہذا ایک کی اجازت ہوگی, ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے بھائی. ولانا, اب ہماری دلیل آ گئی ولانا قوله علیہ الصلاۃ والسلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان السنۃ ان یستقبل الطہر استقبالا فیطلقها لکل قرئ تطلیقۃ. بھائی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے سنت طریقے سے خطا کی ہے, تم سنت طریقے سے چوک گئے ہو, لہذا آپ نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ بیوی سے رجوع کرو اور پھر جب طہر آ جائے تو پھر اس کے اندر چاہو تو بیوی کو روک لو اور چاہو تو طلاق دے دو بھائی. تو کہتے ہیں ولنا قوله علیہ الصلاۃ والسلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں کہ ان سنۃ ان یستقبل الطہر استقبالا. استقبال کا معنی کسی چیز کا استقبال کرنا, سامنا کرنا, یہاں مراد ہے انتظار کے معنی میں. حضور ان سے فرما رہے ہیں ان سنت, کہ سنت یہ ہے یعنی سنت طریقہ طلاق کا یہ ہے ان یستقبل الطہر استقبالا, کہ وہ طہر کا انتظار کرے کہ وہ طلاق دینے والا انتظار کرے طہر کا. فیطلقها لکل قرئ تطلیقۃ, پھر اس کو طلاق دے دے. قرئن, قرئن یہ یاد رکھو ازداد میں سے ہے. قرآن لفظ کس میں سے ہے؟ ازداد, زد کی جمع ہے ازداد بھائی, زواد کے ساتھ. بھائی آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے دو متضاد معانی ہوتے ہیں, جیسے قرآن کا معنی طہر بھی اور قرآن کا معنی حیض بھی. اسی طرح بیع, بھائی بیع کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی, یہ بھی ازداد میں سے ہے, البتہ یہ زیادہ تر بیچنے میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح شراء, خریدنا, شراء بھی ازداد میں سے ہے, یعنی اس کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی, البتہ اب یہ زیادہ خریدنے میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن لفظ ہے یہ کس میں سے ہے؟ ازداد میں سے. آیت کے اندر آیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہاں ہم قرآن کا معنی حیض کے لیتے ہیں کیونکہ ثلاثہ پر تبھی عمل ہو سکتا ہے جب قرآن سے حیض مراد لیا جائے. تین حیض پورے شمار ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اسے طہر مراد لیا جائے تو پورے تین طہر شمار نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر بہرحال حدیث کے اندر قرآن طہر کے معنی میں ہے. تو حضور نے حضرت ابن عباس سے فرمایا ان سنت یستقبل الطہر استقبالا, کہ سنت طریقہ یہ ہے طلاق کا کہ وہ طہر کا انتظار کرے. فیطلقها لکل قرئ تطلیقۃ, پھر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو ہر طہر میں ایک طلاق, پھر ہر طہر میں ایک طلاق دے. دیکھو انہوں نے حیض میں طلاق دی تھی, حضور نے رجوع کا حکم دیا کہ رجوع کرو, اور طہر جب آئے تو طہر کے اندر طلاق دے دینا یا چاہو تو اس کو روک لینا. تو اگر طلاق ثانی بدعت ہوتی, ہماری دلیل چل رہی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف, امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, ایک ہی طلاق جو ہے اس کی اجازت ہے خاوند کو, اس سے زیادہ دے گا تو یہ گناہگار ہوگا, یہ بدعت ہے بھائی. तवज्जो है, हम कहते हैं अगर दूसरी या तीसरी तलाक बिदअत होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे उनको आगे दूसरी तलाक का हुक्म देते कि अभी रुजू करो और फिर तोहर में तलाक देना, तो जब तोहर में तलाक देंगे वो कौन सी तलाक हो जाएगी, दूसरी होगी ना, पहली में तो बेशक रुजू कर लिया लेकिन तलाक तो गुजर गई, एक हो गई भाई, और दूसरी देगा अब तोहर के अंदर, मालूम है दूसरी तलाक देना बिदअत नहीं है भाई, हुजूर उनको तलाक सुन्नत का तरीका समझा रहे हैं। यह तो थी नकली दलील। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तलाक हसन भी बिदअत है, हमारी दलील चल रही है कि नहीं तलाक हसन ये भी सुन्नत है भाई। और एक तो हदीस जिक्र कर दी, दूसरा अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नल हुक्म युदारु अला दलील हाजति, और इसलिए क्योंकि ये जो हुक्म है इसका मदार होगा अला दलील हाजति, दलील हाजत पर, किस पर, दलील हाजत पर। भाई देखो ये जो हुक्म है कौन सा हुक्म, तलाक का जायज होना, तलाक का मुबाह होना। इमाम मालिक रहमला तो फरमाते हैं एक ही तलाक मुबाह है, इससे ज्यादा मुबाह ही नहीं है, दोगे तो हो तो जाएगी, इससे ज्यादा तलाकें दोगे वो हो तो जाएंगी लेकिन आदमी गुनाहगार होगा भाई। तो मुबाह कितनी है, एक तलाक। हम कहते हैं ये जो तलाक का मुबाह होना है, ये जो तलाक की इजाजत है, इसका दारोमदार दलील हाजत पर होगा, किस पर,
दलील
हाजत पर। वजह यह भाई देखो शरीयत तलाक की इजाजत देती है, हाजत और जरूरत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि तलाक के अंदर असल तो मुमानअत है और शरीयत तलाक की इजाजत किस लिए देती है, हाजत और जरूरत की वजह से। किस चीज की जरूरत है, कि इंसान उस बीवी से छुटकारा पाना चाहता है, तबीयतें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, या बीवी बेइंतहा बद अखलाक है, बद जुबान वगैरह है भाई, तो इस इंसान छुटकारे का मोहताज है, तवज्जो है। अब हमारी दलील आ गई, हम कहते हैं कि इंसान तलाक का मोहताज है या मोहताज नहीं, यह तो एक अमरे बातिनी है, इसका तो हमें पता नहीं चल सकता, इसका तो हमें पता भाई, एक आदमी एक औरत से छुटकारा पाना चाहता है तो इसको हाजत है या हाजत नहीं इसका हमें पता नहीं चल सकता, यह तो एक दिल की बात है भाई। लिहाजा जब हाजत एक दिल की बात है उसका पता नहीं, जब एक चीज का पता ना चल सके तो उसकी दलील पर हुक्म का मदार कर दिया जाता है
जी।
किस पर,
दलील,
उसकी दलील पर हुक्म का मदार कर दिया जाता है, तो दलील हाजत पर हुक्म का मदार होगा, और जब दलील हाजत पाई जाएगी तो मालूम हुआ उसके लिए तलाक मुबाह हो जाएगी
जी।
भाई हाजत का तो पता नहीं चल सकता, ये तो दिल की चीज है, बीवी से एक दफा लड़ाई हो जाए तो क्या एक दफा लड़ाई से वो तलाक का मोहताज हो गया, नहीं, एक आध लड़ाई या झगड़ा वगैरह ये तो जुदाई के लिए ये इल्लत नहीं है। बात ये चल रही है इंसान बाद अवकात तलाक का मोहताज हो जाता है, वो कब मोहताज होता है, क्या एक दफा लड़ाई होने से, नहीं नहीं, वो आपस में तबीयतें ही नहीं मिल रही किसी एतबार से, खावन ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन निबाह की कोई सूरत नहीं बन रही भाई, या तो वो औरत बे इंतहा बदजुबान है, या उसकी आदतें बहुत खराब हैं, या उसकी तबीयत बिल्कुल अजीब किस्म की है, खावन ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन निबाह की कोई सूरत नहीं बन रही। अब हम कहेंगे इसको हाजत है छुटकारे की, एक आध लड़ाई वगैरह या दो चार लड़ाइयों से यह बात साबित नहीं होती कि इसको तलाक की एहतियाज है, तो मालूम हुआ। अब यह कैसे पता चलेगा, तो देखो मोहताज होना यह तो एक दिल की बात है, यह तो पता नहीं चल सकता कि इसको एहतियाज है तलाक की या नहीं, जब एक चीज का पता ना चल सके तो उसकी दलील पर हुक्म का मदार कर दिया जाता है, तो जब भी वो दलील पाई जाएगी मालूम हुआ इसको तलाक की हाजत है, असल हाजत का तो पता नहीं लेकिन दलील हाजत जब भी पाई जाएगी हम क्या कहेंगे, इसको तलाक की हाजत है, और जब तलाक की हाजत हो तो तलाक क्या हो जाती है, मुबाह। तवज्जो भी है कि नहीं, शरीयत ने क्यों इजाजत दी तलाक की, जरूरत और हाजत, और जरूरत और हाजत क्या एक दो चार छह लड़ाइयों से जरूरत उसकी साबित हो जाएगी, नहीं, मियां बीवी में तो लड़ाइयां और झगड़े होते ही रहते हैं, होते भी हैं और खत्म भी हो जाते हैं। असल हाजत जब वाकई इंसान अब छुटकारे का मोहताज हो गया है, अब निबाह की और जोड़ की कोई सूरत बाकी नहीं रही, तो यह तो एक अमरे बातनी है, इसका तो हमें पता नहीं चल सकता, इसका पता जब नहीं चल सकता कि ये वाकई ये जुदाई का मोहताज है या मोहताज नहीं, तो फिर लिहाजा जब एक चीज का पता ना चल सके तो उसकी जो दलील होती है उस पर हुक्म का मदार कर दिया जाता है। जैसे देखो सफर के अंदर चार रकात नमाज के बजाय दो रकात नमाज पढ़ी जाती है, फर्ज चार के बजाय दो रकात हो जाते हैं, कसर नमाज अदा की जाती है, यह इजाजत शरीयत ने क्यों दी? क्योंकि सफर में मशक्कत होती है, इंसान मुश्किल में है, तकलीफ में है, घर से दूर है, तो लिहाजा शरीयत ने आसानी कर दी कि चार के बजाय दो पढ़ लिया करो। तो अब यह सफर में कसर नमाज हम पढ़ते हैं, इसकी इल्लत क्या है? मशक्कत। लेकिन ये मशक्कत ये तो अमरे बातनी है, हमें तो नहीं पता चल सकता किसी शख्स से कि इसको कितनी मशक्कत हुई है या कितनी नहीं हुई। मैंने बताया बाद लोगों को ऐसा मजबूत जिस्म अल्लाह ने दिया होता है वो कई कई दिन सफर करते हैं, उनको परवाह भी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? लिहाजा मशक्कत अमरे बातनी हुई जिसका हमें पता नहीं चल सकता, लिहाजा वो जो दलील हुक्म है यानी सफर उसी पर हुक्म की बुनियाद रखती। यह मशक्कत की दलील क्या है? मशक्कत किस वजह से हो रही है? सफर की वजह से। तो इस मशक्कत की जो दलील है उसी पर हुक्म का मदार कर दिया कि जो भी तीन दिन का सफर करे समझो मशक्कत पाई गई, चाहे उसे हुई या नहीं हुई, लेकिन तीन दिन का सफर है या ज्यादा का तो समझो बस मशक्कत पाई गई। जब मशक्कत पाई गई है तो लिहाजा अब यह कसर करेगा, यह मशक्कत वाला सफर है, लिहाजा क्या करेगा? कसर करेगा। बात समझ में आ गई? तो जब हुक्म का मदार एक अमरे बातनी पर हो और उस अमरे बातनी का तो पता नहीं चल सकता तो फिर हुक्म का मदार उसकी दलील पर कर दिया जाता है। आगे अभी देखिए मजीद बात वाजे हो जाएगी। कहते हैं वली अन हुक्म युदारु अला दलील हाजती, इसलिए क्योंकि ये जो हुक्म है, कौन सा हुक्म, किस चीज की बात चल रही है? तलाक का मुबाह होना। शरीयत की तरफ से इमाम मालिक ने बताया सिर्फ एक तलाक मुबाह है, ज्यादा मुबाह नहीं। हम कह रहे हैं नहीं, ये जो तलाक मुबाह होती है ये हाजत की वजह से होती है और हाजत का तो पता नहीं चल सकता, तो फिर मदार दलील हाजत पर होगा और जब भी दलील हाजत पाई जाएगी तलाक मुबाह हो जाएगी। जब भी दलील हाजत पाई जाएगी तो तलाक मुबाह हो जाएगी। तो कहते हैं वली अन्नल हुक्मा, कहते हैं ये जो हुक्म है यानी तलाक के मुबाह होने वाला, युदार वाला दलील हाजती, इसका दारो मदार जो है दलील हाजत पर होगा। वह हुआ इकदाम वाला तलाक फी जमानी तजद्दुदी रगबती वह हुआ तोहरु, और वो इकदाम वाला तलाक, वो तलाक पर पेशकदमी करना है यानी तलाक देना है, फी जमानी तजद्दुदी रगबती, तजद्दुद का माना है नया होना, तजद्दुद का माना नया होना। वह हुआ इकदाम अला तलाकी, और वो दलील हाजत क्या है? वो तलाक पर पेशकदमी करना है, फी जमानी तजद्दुदी रगबती, रगबत के नए होने के जमाने में, रगबत के नए होने के जमाने में। वह हुआ तोहरु, और वो रगबत के नए होने का जमाना कौन सा है? कहते हैं वह हुआ तोहरु, वो तोहर है यानी जिसमें सोहबत न की हो। भाई देखिए ये जो हैज है ना, हैज, हैज के जमाने में शरीयत ने औरत के साथ सोहबत से मना किया है जी। और नीस इस जमाने के अंदर चूंकि औरत से हैज का खून जारी है लिहाजा इंसान की तबीयत भी सोहबत करने को नहीं करती। तो मालूम हुआ ये जो हैज का जमाना है ये औरत से नफरत का जमाना है, यानी इस जमाने में खावंद को औरत का शौक नहीं होता। नफरत का यह माना नहीं कि उसे नफरत करने लग जाता है, माना यह है खावंद को उसे सोहबत का शौक नहीं होता, सोहबत के इरादे से खावंद उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो मालूम हुआ यह जो हैज है यह औरत से नफरत का जमाना है। किस एतबार से नफरत? उसकी जात के एतबार से नफरत नहीं है बल्कि सोहबत के एतबार से तबीयत उस तरफ मुतवज्जे नहीं है, क्योंकि शरीयत ने भी हैज की हालत में सोहबत से मना किया है और नीस इंसान की तबीयत भी गवारा नहीं करती कि औरत से खून जारी हो और वो उससे सोहबत कर ले। भाई तो मालूम हुआ ये जो हैज का जमाना है इसके अंदर तबअन जो है इंसान की औरत में रगबत नहीं होती। हां नफरत का तर्जमा आदम रगबत कर लें, क्या कर लें? आदम रगबत, यानी तो हैज की हालत में खावंद की बीवी में रगबत नहीं होती यानी सोहबत के एतबार से। तो लिहाजा शरीयत ने मना किया है कि भाई हैज की हालत में तलाक नहीं देनी, क्योंकि हो सकता है ये जमाना आदम रगबत वाला है और ये आदम रगबत तो आरजी है
जी।
ये आदम रगबत तो आरजी है, यह हैज का जमाना तो चंद दिनों में गुजर जाएगा, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो इस आरजी आदम रगबत की वजह से तुम बीवी को तलाक दे दो
जी।
आरजी आदम रगबत की वजह से तुम बीवी को तलाक दे दो, इसलिए शरीयत ने मना किया कि हैज में तलाक नहीं देनी। और नीज इंसान जब बीवी से सोहबत कर लेता है तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लिहाजा जब सोहबत कर ली तो बीवी में रगबत कम हो गई। तोहर के अंदर जब बीवी से सोहबत कर लेगा तो बीवी से रगबत कम हो गई, तो शरीयत ने मना किया कि वो तोहर जिसमें तुम सोहबत कर चुके हो उसमें भी बीवी को तलाक नहीं देनी, क्योंकि हो सकता है ये आरजी आदम रगबत की वजह से तुम तलाक दे रहे हो
जी।
किसकी वजह से भाई, जब इंसान की ख्वाहिश पूरी हो गई तो दोबारा ख्वाहिश उसको कुछ मुद्दत के बाद होगी भाई
जी।
बात समझ में आ गई, तो लिहाजा शरीयत ने उस तोहर में भी तलाक देने से मना किया कि जिसमें खावंद ने सोहबत की हो, कि कहीं ऐसा ना हो यह आरजी आदम रगबत, यूं कहो यह आरजी नफरत की वजह से तुम कहीं तलाक ना दे रहे हो
जी।
हां ऐसा तोहर जिसके अंदर खावंद ने सोहबत नहीं की, याद रखो ये रगबत के नया होने का जमाना है, तबीयत सलीमा जो है वो कुछ मुद्दत के बाद फिर सोहबत की तरफ रागिब होगी। तो ये जो नया तोहर शुरू हो गया ये रगबत के नया होने का जमाना है, क्योंकि पिछले तोहर में खावन ने सोहबत की थी, पिछले महीने में खावन ने सोहबत की थी, और अब दरमियान में कुछ वक्त गुजर गया, हैज का जमाना भी आ गया, नया तोहर शुरू हुआ और ये रगबत के नया होने का जमाना है। इतनी मुद्दत में खावन को दोबारा औरत की रगबत हो जाएगी, तो ये रगबत के नया होने का जमाना है, ये जो तोहर है जिसमें भी खावन ने सोहबत नहीं की और इसके बावजूद खावन तलाक पर पेशकदमी कर रहा है और तलाक देना चाहता है, मालूम हुआ खावन को तलाक की हाजत है। बात चल रही थी भाई तलाक इंसान के लिए मुबाह कब होगी, जब उसको हाजत होगी। और साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि जब नया तोहर आता है तो यह रगबत के नया होने का जमाना है, लेकिन रगबत का जमाना होने के बावजूद खावन ने अगरचे अभी तक इस तोहर में सोहबत नहीं की और वो फिर भी तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, तलाक देना चाह रहा है, मालूमत खावन को तलाक की हाजत है, वो इस औरत से छुटकारा पाना चाहता है भाई। ये तो वो जमाना है जिसमें इंसान बीवी की तरफ उसकी रगबत बढ़ जाती है, वो उससे सोहबत करना चाहता है, और ये खावन उसके बावजूद नई रगबत का जमाना होने के बावजूद ये खावन तलाक देना चाह रहा है, मालूम हुआ इसको हाजत है
जी।
मालूम हुआ इसको हाजत है, लिहाजा इसके लिए तलाक मुबाह होगी, इसके लिए तलाक मुबाह होगी। बात समझ में आ गई, लिहाजा ये तलाक दे देता है, तलाक दे देता है। अब इसने तोहर में सोहबत नहीं की, फिर उसके बाद अगला तोहर आया, अगले तोहर के अंदर फिर यह रगबत के नए होने का जमाना है, काफी दिन गुजर गए हैं, खावन ने बीवी से सोहबत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद खावन फिर बीवी को तलाक देना चाह रहा है। इस जमाने के अंदर जो रगबत के नया होने का जमाना है, मालूम है खावन को छुटकारे की हाजत है, लिहाजा इसके लिए तलाक मुबाह होगी, वह दूसरी भी तलाक दे सकता है। फिर तीसरा तोहर आया, ये फिर रगबत के नया होने का जमाना है, और कितने दिन गुजर गए खावन ने सोहबत नहीं की हुई बीवी से, फिर भी खावन तलाक पर इकदाम कर रहा है, तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, हालांकि ये तो रगबत के नया होने का जमाना था, मालूम हुआ खावन को तलाक की हाजत है, तो इसलिए वो खावन को तलाक की इजाजत होगी शरअन और वह तलाक दे सकता है। तो हासिल कलाम क्या कि हैज के अंदर भी खावंद की बीवी से तबान नफरत होगी क्योंकि वो सोहबत नहीं कर सकता, और नीज वो तोहर जिसमें खावंद सोहबत कर ले वहां पर भी आरजी तौर पर तबान नफरत होगी, यानी सोहबत को जी नहीं चाहेगा क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुका है। लेकिन जब नया तोहर आएगा, ये तो रगबत के नया होने का जमाना है, इस जमाने में तो खावंद की रगबत बीवी में बढ़ जाती है, लेकिन यह शख्स फिर भी तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, फिर भी तलाक देना चाहता है, मालूम हुआ इसको छुटकारे की हाजत है, लिहाजा इसके लिए तलाक मुबाह हो जाएगी। दलील समझ में आ गई। देखिए भाई, कहते हैं वली अन अल हुक्म युदारु अला दलील अल हाजत, इसलिए क्योंकि ये तलाक के मुबाह होने का जो हुक्म है इसका दारो मदार दलील हाजत पर होगा। वह वल इकदाम अला तलाकी, तो देखो हाजत का तो हमें पता नहीं चल सकता लेकिन दलील हाजत तो आ गई ना। दलील हाजत क्या, रगबत का जमाना है, वो फिर भी तलाक देना चाह रहा है, मालूम हुआ इसको हाजत है। जब दलील हाजत आ गई कि ये फिर भी तलाक देना चाह रहा है रगबत के जमाने के बावजूद, तो मालूम हुआ इसको हाजत है, और जब हाजत है तो इसके लिए तलाक देना मुबाह हो जाएगा। तो कहते हैं वली अन अल हुक्म युदारु अला दलील अल हाजत, और इसलिए क्योंकि ये तलाक मुबाह होने का जो हुक्म है इसका दारो मदार दलील हाजत पर है। वह हुवल इकदामु अला तलाकी फी ज़मानी तजद्दुदिर रगबती, और वो तलाक पर पेश कदमी करना है फी ज़मानी तजद्दुदिर रगबती रगबत के नए होने के जमाने में। वह हुवत तोहरू, और रगबत के नए होने का जमाना वो तोहर है। फल हाजतु कल मुतकर्रिरती नज़रन इला दलीलिहा, फल हाजतु कल मुतकर्रिरती, तो ये जो हाजत है ये ऐसे ही है जैसे इसमें तकरार हो रहा है, बार बार यह हाजत पेश आ रही है। किस एतबार से, नजरन इला दलीलिहा, दलील हाजत की तरफ नजर करते हुए। दलील हाजत क्या है कि ऐसा तोहर है जिसमें खामन ने बीवी से सोहबत नहीं की, और यह कौन सा जमाना होता है, बीवी में रगबत का जमाना, और वो फिर भी क्या कर रहा है, तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, तो मालूम हुआ इसको हाजत है। तो तलाक पर रगबत के जमाने के बावजूद तलाक पर पेशकदमी करना यह दलील हाजत है। ये तो जब ये दलील हाजत आ गई तो समझो हाजत आ गई, और जब हाजत आ गई तो तलाक क्या हो जाती है, मुबाह। और हर तोहर के अंदर ये दलील हाजत आ रही है तो गोया हाजत भी मुकर्रर बार बार पेश आ रही है, और बार बार वो तलाक दे सकता है। बात समझ में आ गई, ये माना है। तो कहते हैं फल हाजतु कल मुतकर्रिरती, और हाजत जो है वो ऐसी ही है जैसे कि उसमें तकरार आ रहा हो। नजरन इला दलीलिहा, दलील हाजत की तरफ नजर करते हुए। सुम कीला, जी अब फिर ये बयान फरमाएंगे कि औरत को खावन तलाक देना चाहता है, तलाक तोहर में देनी है, और ऐसा तोहर जिसमें सोहबत न की हो, और तलाक भी कौन सी हो, रजई हो, तो तोहर में किस वक्त तलाक दे, तोहर के इब्तिदाई जमाने में जैसे ही तोहर शुरू हुआ तलाक दे दे, या तोहर के बिल्कुल इख्तिताम पर जाकर जब हैज शुरू होने वाला हो उस वक्त जाकर तलाक दे, तो ये जिक्र फरमाएंगे। कहते हैं सुम मकीला, फिर कहा गया है अल औला, बेहतर यह है अयुआ खिरल ईका इला आखिरी तोहरी। ईका भाई औका यूकियो, ईका का माना है वाके करना, मुराद है तलाक वाके करना। मकीला, फिर कहा गया है अल औला, बेहतर यह है अयुआखिर अल ईका के खावन तलाक वाके करने को मुअख्खर करे, इला आखिर तोहरी, कहां तक, तोहर के आखिर तक, तोहर के आखिरी हिस्से में तलाक दे। एहतराजन अन तत्वील इद्दती, इद्दत को लंबा करने से एहतराज करते हुए, तत्वील इद्दत से बचने के लिए। वजह यह कि अगर तोहर के शुरू में ही तलाक दे देगा तो आप ये औरत को ये पूरा तोहर भी गुजारना पड़ेगा, और अगले तीन हैज भी गुजारेगी, और उन तीन हैजों के दरमियान जो दो तोहर हैं वो भी गुजारेगी, तो गोया तीन हैज और तीन तोहर सारे उसको गुजारने पड़ गए। तीन हैज और तीन तोहर, भाई तीन हैज है ना इद्दत, उन तीन हैजों के दरमियान के दो तोहर भी आ गए, और ये वाला शुरू वाला भी पूरा तोहर आ गया, तो पूरे तीन तोहर और तीन हैज गुजारने के बाद औरत की इद्दत खत्म होगी, तो औरत के लिए इद्दत का जमाना लंबा हो गया। और अगर तोहर के आखिरी हिस्से में जाकर तलाक देगा तो तलाक देगा और उसके एक आध दो दिन बाद ही क्या शुरू हो जाएगा, हैज शुरू हो जाएगा, तो बस औरत सिर्फ तीन हैज गुजारेगी और दरमियान वाले दो तोहर गुजारेगी, तो तीन हैज और दो तोहरों के साथ इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर शुरू में तलाक देगा तो फिर तोहर भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तवज्जो है, लिहाजा बेहतर क्या है कि आखिर में दे तलाक, भाई ये माना है। तो कहते हैं सुम मकीला अल औला अयुआ खिरल ईका इला आखिर तोहरी, के बेहतर यह है कि मुअख्खर करे तलाक वाके करने को तोहर के आखिर तक। احتراز عن تطویل عدتی, تطویل عدت سے بچنے کے لیے, ول اظہر اور زیادہ ظاہر یہ ہے, ایوں تلقہا کما طہرت, کہ اس کو طلاق دے دے کما طہرت جیسے ہی یہ پاک ہو. زیادہ ظاہر قول کیا ہے؟ جیسے ہی حیض سے پاک ہو خاوند اس کو طلاق دے دے. تو یہ ایسا طہر ہے جس میں خاوند نے ابھی صحبت نہیں کی. اگر یہ طلاق کو مؤخر کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو خاوند صحبت میں مبتلا ہو جائے, خاوند کو پھر رغبت ہو جائے اور وہ اسے صحبت کر لے اور پھر جب طلاق دے گا پھر تو ایسے طہر میں طلاق ہو جائے گی جس میں اس نے صحبت کی ہوئی ہے, تو یہ تو طلاق بدعی بن جائے گی. توجہ ہے, لہذا شروع میں ہی طلاق دے دے. تو کہتے ہیں والاظہر اور زیادہ ظاہر یہ ہے, ان یطلقها کما طہرت, کے خاوند بیوی کو طلاق دے دے جیسے ہی وہ پاک ہو. لانه لو اخر, اس لیے کیونکہ اگر خاوند نے طلاق کو مؤخر کر دیا, ربما یجامعها, تو بسا اوقات خاوند اسے صحبت کر لے گا. ومن قصده التطلیق, اور خاوند کا تو طلاق دینے کا ارادہ تھا اور اس نے تو صحبت کر لی. فیبتلا بالایقاع عقیب الوقاع, تو وہ مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے میں عقیب الوقاع, صحبت کے بعد. وقاع جماع کو کہتے ہیں, وقاع جماع کو کہتے ہیں. تو دیکھو صحبت کر لی اور اس کا تو طلاق دینے کا ارادہ تھا, اب جب طلاق دے گا تو یہ ایسے طہر میں طلاق دے رہا ہے جس میں صحبت کر چکا ہے, تو دیکھو یہ گناہگار ہوگا بھائی. تو یہ معنی ہے فیبتلا بالایقاع, تو خاوند مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے میں عقیب الوقاع, جماع کے بعد. آگے دیکھیے, وطلاق البدعۃ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدہ. آپ طلاق بدعت کا بیان کر رہے ہیں, میں نے آپ کو ضابطہ بتلا دیا کہ طلاق سنی میں کتنی شرطیں ہیں, چار. پہلی شرط طہر میں ہو طلاق, دوسری شرط ایسا طہر جسے میں ابھی جماع نہ کیا ہو, تیسری شرط طلاق بھی رجعی ہو, اور چوتھی شرط کہ اس طہر سے ماقبل والے حیض میں بھی جماع نہ کیا ہو بھائی. تو یہ چار شرطیں ہیں, آپ ان شرطوں کو ذہن میں رکھیں, آپ فوراً بتلا سکتے ہیں کہ کون سی طلاق بدعت ہے. مثلا ایک شخص اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دیتا ہے تو یہ کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق بدعت, کیونکہ طہر میں طلاق دینا مشروع ہے. یا پھر ایسے طہر میں طلاق دیتا ہے جس میں صحبت کر چکا ہے, یہ بھی کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق بدعت ہوئی. یا اسی طرح ایک ہی طہر کے اندر دو طلاقیں دے دیتا ہے, یہ بھی کیا ہوئی؟ بدعت ہوئی, کیونکہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے. یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دیتا ہے, یہ بھی کیا ہوئی؟ طلاق بدعت ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ طلاق البدعتی, اور طلاق بدعت یہ ہے, ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدہ, کہ خاوند بیوی کو تین طلاقیں دے دے ایک ہی کلمے سے. او ثلاثا, یا تین طلاقیں دے دے فی طہر واحد, ایک ہی طہر میں. ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دے دے, یعنی طلاق کا لفظ ایک دفعہ کہے اور ساتھ عدد کو ملا دے. خاوند بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کتنی طلاقیں ہوں گی اس لفظ سے؟ ایک طلاق. لیکن اگر وہ یوں کہے میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں, تو دیکھو طلاق کا لفظ ایک ہی دفعہ لایا لیکن ساتھ تین کا عدد ذکر کر دیا, تو اس کو ہم کہیں گے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دے رہا ہے. ایک ہی لفظ, یعنی لفظ طلاق ایک ہی دفعہ وہ لا رہا ہے لیکن ساتھ وہ عدد یعنی تین کو ذکر کر رہا ہے, تو یہ ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دے رہا ہے اور یہ بدعت ہے بھائی. یا اسی طرح ایک ہی لفظ سے دو طلاقیں دے, یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے کہ میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں. تو ایک وقت میں ایک طلاق ہونی چاہیے. اور کبھی ایک ہی طہر میں تین طلاقیں خاوند دے دیتا ہے, یا تو یوں کہتا ہے انت طالق انت طالق انت طالق. دیکھو ایک لفظ ہے یا تین لفظ ہیں؟ تین لفظ ہیں. انت طالق ایک لفظ, انت طالق دوسرا لفظ, انت طالق تیسرا لفظ. تو دیکھو یہ تین لفظوں کے ساتھ طلاقیں دے رہا ہے, تو چاہے ایک ہی مجلس میں اس طرح دے, چاہے ایک ہی طہر کے اندر, ایک آج دی ایک کل دی ایک پرسوں دے دی, ایک ہی طہر میں تین طلاقیں وہ دے دیتا ہے وقفے وقفے سے یا تین الگ الگ لفظوں سے, یہ بھی سب کیا ہیں؟ بدعت ہیں, کیونکہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق مشروع ہے. तो कहते हैं वह तलाक उल बिदाती और तलाक बिदाती यह है अयु तल्लिकहा सलासम बिकलिमति वाहिदा के खावन बीवी को तीन तलाकें दे एक ही कलीमे से औ सलासम फी तोहरें वाहिदिन या तीन तलाकें दे एक ही तोहर में फइजाफा अलदा लिखा वक़ा तलाक हो तो जब खावन ऐसा करेगा तलाक तो वाकई हो जाएगी लेकिन वक़ा न आसियन लेकिन यह शख्स जो है गुनाहगार होगा यह शख्स नाफरमान होगा। وقال الشافعي رحمه الله تعالى और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कुल्लु तलाक मुबाह हर तलाक मुबाह है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तो फरमाते थे एक ही तलाक मुबाह है वो भी हाजत की वजह से है वरना वो भी मुबाह न होती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर तलाक मुबाह है क्योंकि शरीयत ने खावन को हक दिया है कि वह अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। तो मालूम है तलाक एक मशरू चीज है और जो चीज मशरू होती है वो ममनू नहीं हो सकती। मशरू चीज ममनू नहीं हो सकती भाई। मशरू का माना जायज ममनू का माना जायज नहीं है भाई। तो एक चीज एक वक्त में या मशरू होगी या ममनू होगी भाई। तो तलाक तो मशरू है सबके नजदीक खावन को अल्लाह ताला ने इजाजत दी है तलाक देने की लिहाजा चाहे खावन एक तलाक दे चाहे दो दे चाहे तीन दे ये सब मशरू है खावन तलाक दे सकता है। आप कहते हैं एक तलाक तो मशरू है तीन गैर मशरू हैं भाई क्यों जब तलाक खुद फी जाती ही मशरू है तो खावन चाहे एक दे चाहे दो दे चाहे तीन दे ये सब क्या है मशरू है भाई जो चीज मशरू हो वो ममनू नहीं हो सकती। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कुल्लु तलाक मुबाह हर तलाक मुबाह है उसकी इजाजत है लिअन्नहु तसर्रुफुन मशरूअन इसलिए क्योंकि तलाक जो है एक मशरू तसर्रुफ है मशरू यानी जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है मुबाह है जो जायज है लिअन्नहु तसर्रुफुन मशरूअन इसलिए क्योंकि तलाक जो है एक मशरू तसर्रुफ है हत्ता युस्तफादु बिहिल हुक्म भाई यहां पर भी याद रखिए हत्ता नसब नहीं देगा हत्ता युस्तफादु बिहिल हुक्म यहां तक कि इसके लिए इसका हुक्म भी हासिल होता है। एक तलाक देगा तो तलाक वाके हो जाएगी दो देगा तो दो वाके हो जाएंगी तीन देगा तो तीन वाके हो जाएंगी। अगर ये ममनू होता तो तीन देने से वाके ना होती लेकिन आप भी मानते हैं कि तीन तलाकें देंगे तो तीन वाके हो जाएंगी तवज्जो है मालूम हुआ ये ममनू नहीं। अगर ये ममनू होती तो फिर इसका हुक्म नहीं होना चाहिए था यानी वाके नहीं होना चाहिए था। तो तलाक का देना और फिर उसका हुक्म भी आ जाता है कि तलाक वाके भी हो जाती है मालूम हुआ तलाक एक मशरू तसर्रुफ है। अगर ममनू होता तो फिर इसका हुक्म ना आता देने से भी तलाक वाके ना होती भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु तसर्रुफुन मशरूउन इसलिए क्योंकि तलाक जो है एक तसर्रुफ मशरू है हत्ता युस्तफादु बिहिल हुक्म यहां तक कि इसके जरिए तलाक का हुक्म भी हासिल हो जाता है यानी तलाक वाके हो जाती है। वल मशरूइयतु ला तुजामिउल हज़र हज़र भाई फिर वही ज़ा के साथ आ गया मुमानअत भाई वल मशरूइयतु ला तुजामिउल हज़र और मशरू होना यह तो जमा नहीं हो सकता मुमानअत के साथ एक चीज मशरू भी हो और ममनू भी हो ऐसा नहीं हो सकता। बिखिलाफ तलाक फी हालत हैज़ी ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह पर एक एतराज होता है उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह पर एतराज होता है कि आपने कहा कि तलाक क्या है मशरू है हालांकि आप भी कहते हैं कि हैज की हालत में तलाक देना गैर मशरू है आप भी कहते हैं हैज की हालत में औरत को तलाक देना गैर मशरू है तोहर की हालत में तलाक देनी चाहिए। तो देखो एक चीज मशरू भी है और ममनू भी है भाई बात समझ में आ गई। तो उसका जवाब देते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं भाई वहां जो हराम है हैज की हालत में तलाक देना अपनी जात की वजह से मना नहीं किया गया बल्कि उसकी वजह से औरत पर इद्दत लंबी हो जाती है औरत पर इद्दत लंबी हो जाएगी क्योंकि जिस हैज में खावन तलाक देगा उससे अगला तोहर हम शुमार करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक इद्दत किससे शुमार होती है तोहरों से। तो अगले तीन तोहर औरत गुजारेगी और इद्दत पूरी हो जाएगी और हमारे नजदीक इद्दत हम किससे शुमार करते हैं, हैज से। तो हमारे नजदीक अगले तीन हैज गुजारेगी तो औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन यह जो हैज जिसके अंदर खावंद ने तलाक दी है, यह हैज इसको शवाफे अभी शुमार नहीं करते इद्दत में, और अहनाफ भी इस हैज को इद्दत में शुमार नहीं करते। तवज्जो है भाई, एक हैज के अंदर खावंद ने बीवी को तलाक दी तो यह हैज इद्दत में शुमार नहीं, शवाफे के नजदीक भी शुमार नहीं, क्योंकि उनके नजदीक तो इद्दत तोहरों से शुमार होती है। यह वाला जिस हैज में तलाक दी है यह इद्दत में शुमार नहीं, तो देखो औरत की इद्दत लंबी हो गई। और अहनाब के नजदीक भी यह वाला हैज जिसके अंदर तलाक दी है यह इद्दत के अंदर शुमार नहीं, बल्कि अगले तीन हैज शुमार होंगे। तो इद्दत तीन हैज हुए या साढ़े तीन हैज हो गए, साढ़े तीन हैज हो गए। देखा इद्दत औरत पर लंबी हो गई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात चल रही है, उन पर एतराज हुआ था कि आपने कहा एक चीज मशरूअ हो वो ममनूअ नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद मानते हैं कि हैज की हालत में तलाक देना ममनूअ है। तो उसका जवाब देते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह कि भाई यहां तलाक अपनी जात की वजह से मना नहीं किया गया तलाक से, बल्कि औरत पर इद्दत लंबी हो जाती है इस वजह से मना किया गया है। तो तलाक यहां अपनी जात के एतबार से मशरूअ ही है, अलबत्ता इद्दत के लंबा होने की वजह से ममनूअ है, यानी गैर की वजह से मुमानात और हुरमत आ रही है, खुद अपनी तलाक की जात की वजह से यहां कोई हुरमत नहीं है। तो कहते हैं बिखिलाफी तलाक फी हालत हैज, बखिलाफ तलाक देने हालत हैज में, लिअन अल मुहर्रम ततवील उल इद्दत अलैहा लत तलाक, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसको हराम करार दिया गया है वह उस औरत पर इद्दत को लंबा करना है, लत तलाक ना के तलाक को, तलाक यहां हराम नहीं है बल्कि इद्दत का लंबा करना हराम है, उसकी वजह से तलाक से मुमानात होगी। भाई नीज इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह पर इश्काल होता है कि आपके नजदीक भी जिस तोहर में खावंद सोहबत कर ले उसमें तलाक देना ममनू है, उसमें तलाक देना ममनू है। तो देखो तलाक मशरू है, लेकिन आप भी फरमा रहे हैं कि यहां पर ममनू है, तो मशरू भी है और ममनू भी है। तो उसका भी जवाब वो देते हैं कि भाई यहां पर यह जिस तोहर में सोहबत खावंद ने कर ली है, इस तोहर के अंदर तलाक देने से इसलिए शरीयत ने मना किया है कि औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी
जी।
औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी क्योंकि खावंद ने सोहबत की है। तो अगर ये हामिला हो चुकी है तो इद्दत क्या होगी, वज़ए हमल। हामिला की इद्दत क्या होती है, वज़ए हमल। जब वो बच्चे को जन्म देगी तब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, और अगर हामिला ना हो तो उसकी इद्दत शवाफे के नजदीक तोहरों के साथ शुमार होगी और अहनाफ के नजदीक हैजों के साथ शुमार होगी। तो जब खावन बीवी से सोहबत कर लेगा तो अब औरत परेशान होगी कि पता नहीं मैं हामिला हूं कि हामिला नहीं हूं, मेरे साथ तो खावन सोहबत कर चुका है। अगर मैं हामिला हूं तो मेरी इद्दत क्या, वज़ए हमल, और अगर मैं हामिला नहीं हूं तो मेरी इद्दत क्या, तोहर शवाफे के नजदीक और हैज अहनाफ के नजदीक। तो वो तोहर जिसके अंदर खावन सोहबत कर ले उसमें तलाक देना इसलिए मना है कि औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी, औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी। अगरचे आगे चल के फिर जब उसको हैज वगैरह आएगा उसको पता लग जाएगा कि मैं हामिला नहीं, लेकिन इस वक्त तो जब तलाक दे रहा है औरत पर क्या कर रहा है, इद्दत को मुश्तबे कर रहा है। तवज्जो है, लिहाजा इसलिए इस इश्तिबाह की वजह से इस तोहर के अंदर तलाक देना मना है, खुद तलाक की अपनी जात की वजह से मना नहीं है। भाई आगे देखिए, वलाना, और हमारी दलील यह है कि अनल असलफी तलाक हुल हाजरू लिमा फीही मिन कतअ निकाह अल्लज़ी तअल्लक़त बिहिल मसालिहु दीनियत वद्दुनियाविया। अब हमारी दलील आ गई, इधर देखिए, हमारे नजदीक तलाक के अंदर असल मुमानात ही है
जी।
तलाक के अंदर असल मुमानात ही है। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस तलाक की वजह से निकाह टूट जाएगा, और निकाह ऐसी चीज थी जिसके दुनियावी फायदे भी थे और उखरवी फायदे भी थे। उखरवी फायदा यह कि निकाह की वजह से इंसान जीना से महफूज हो गया, गुनाहों से बच गया भाई, और दुनियावी फायदे भी हैं कि घर आबाद होगा, घर का निजाम चलाएंगे, औलाद हासिल होगी, औलाद की तरबियत करेंगे वगैरह, और नीज शहवत पूरी होगी। तो कितनी ही दुनियावी मसलहतें हैं निकाह के अंदर। तो लिहाजा जब तलाक देगा तो यह निकाह जिसकी दुनियावी मसलहतें भी हैं और उखरवी मसलहतें भी हैं, यह निकाह टूट जाएगा। लिहाजा इसलिए तलाक में असल यह है कि वह ममनू है, तो तलाक के अंदर असल ममानियत है क्योंकि इसकी वजह से निकाह टूट जाता है और वो जो दीनी और दुनियावी मसलहतें हैं वो अब हासिल नहीं हो सकती भाई। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नल असल फी तलाक हुवल हज़्रु, कि असल जो है तलाक के अंदर वो ममानअत है। लिमा फीही मिन क़त्अन निकाह अल्लज़ी तअल्लक़त बिहिल मसालिहुद्दीनियतु वद्दुनियाविया, लिमा फीही इस वजह से कि इस तलाक के अंदर वो चीज है मिन क़त्अन निकाह यानी उस निकाह को तोड़ना अल्लज़ी तअल्लक़त बिही के जिसके साथ मुतअल्लिक हैं अल मसालिहुद्दीनियतु वद्दुनियाविया, दीनी और दुनियावी मसलहतें भाई, वो निकाह जिसके साथ दीनी और दुनियावी मसलहतें मुतअल्लिक हैं उसका तोड़ना है इस तलाक के जरिए, तो लिहाजा तलाक में असल मुमानअत ही है। लेकिन वल इबाहतु लिल हाजति इलल खलासी, लेकिन तलाक का मुबाह होना और उसकी इजाजत होना लिल हाजति इलल खलासी, वो छुटकारे की हाजत की वजह से है कि बाज औकात इंसान बीवी से इतना तंग आ जाता है कि हर हाल में उसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। वला हाजत इलल जमई बैन सलास, तो हाजत की वजह से तलाक की इजाजत हो जाती है। तो कहते हैं वल इबाहत लिल हाजति इलल खलासी, और ये इबाहत जो होती है छुटकारे की हाजत की वजह से होती है। वला हाजत इलल जमई बैन सलासी, और कोई हाजत नहीं है तीन तलाकों के जमा करने की। भाई हाजत तो जब तोहर में एक तलाक दे देगा तो हाजत क्या हुई, पूरी हो गई, हाजत पूरी हो गई। यही औरत इद्दत गुजारेगी और इद्दत गुजार के बायना हो जाएगी, फिर जहां मर्जी निकाह करे। तो लिहाजा हाजत तो एक तलाक से पूरी हो रही थी, लिहाजा तीन इकट्ठी तलाकें देने की कोई हाजत नहीं। एक ही लफ्ज से देता है या तीन अलग अलग लफ्जों से, इनको जमा करने की कोई हाजत नहीं। तो मालूम है तलाक की इजाजत शरीयत ने दी है हाजत और जरूरत की वजह से, और जो चीज जरूरतन साबित हो वो जरूरत के बकदर ही साबित होती है। जिस चीज की इजाजत शरीयत ने जरूरत की वजह से दी है वो बकदरे जरूरत ही साबित होगी, और जरूरत एक तलाक से पूरी हो जाती है, लिहाजा एक ही तौहर में तीन तलाकें देना जायज नहीं होगा। देगा हो जाएंगी, अलबत्ता गुनाहगार होगा भाई। ये माना है वला हाजत इलल जमई बैन सलासी, और कोई हाजत नहीं है तीन तलाकों के जमा करने की। वही फिल मुफर्रक अलल अतहार साबितुन नजरन इला दलीलिहा, ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि ए अहनाफ, आपने कहा तलाक के अंदर असल ममानअत है और इसकी शरीयत ने इजाजत दी है जरूरत की वजह से। यही बातें तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी फरमा रहे थे, और उन्होंने कहा था सिर्फ एक से जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा बाकी दो और तीन देने की कोई हाजत नहीं। लेकिन वहां आप कहते थे कि नहीं, हर तोहर में एक एक तलाक देता चला जाए, दे सकता है, यह भी सुन्नत तरीका है, तवज्जो है। और यहां अब आप क्या कह रहे हैं कि हाजत किससे पूरी हो गई, एक से पूरी हो गई, लिहाजा एक ही तोहर में तीन तलाकें इकट्ठी नहीं दे सकता। देगा तो गुनाहगार होगा, तलाकें वाकई हो जाएंगी लेकिन यह आदमी गुनाहगार होगा, इसने एक हराम काम का एक इर्तिकाब किया है भाई। तो उसका जवाब अब साहिब हिदाया दे रहे हैं कि भाई हमने कहा एक तोहर में एक ही तलाक दे सकता है, दो या तीन नहीं दे सकता क्योंकि एक की से हाजत पूरी हो गई, बाकी अलग अलग तोहरों में तीन तलाकें देने की हाजत हो सकती है। किस तरह, दलील हाजत की तरफ नजर करते हुए। किसकी तरफ, दलील हाजत की तरफ नजर करते हुए जो हमने बयान कर दी। दलील हाजत क्या, दलील हाजत भाई, हाजत तो एक अमरे बातनी है, हाँ उसका तो हमें पता नहीं चल सकता कि वाकई ये छुटकारा पाने का मोहताज है या मोहताज नहीं, ये तो एक अमरे बातनी है, ये तो हमें पता नहीं चल सकता। एक झगड़ा है या दो झगड़े हैं या दो चार झगड़े हैं, तो उससे तो हम ये नहीं कह सकते ये छुटकारा पाने का मोहताज है भाई। तवज्जो है, मियां बीवी में तो झगड़ा हो ही जाता है, तो हर झगड़े की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह शख्स अब इस औरत से छुटकारे का मोहताज है, ये शख्स इस औरत से छुटकारे का मोहताज है, बल्कि वो दलील हाजत देखना पड़ेगी। और वो क्या, कि तोहर का जमाना आया और ऐसा तोहर का जमाना है जिसमें खावन ने भी सोहबत नहीं की, और ये जो तोहर का जमाना होता है इसके अंदर तो खावन की बीवी में रगबत बढ़ जाती है, ये तो रगबत के नया होने का जमाना है, और रगबत का नया जमाना होने के बावजूद खावन इकदाम अल तलाक कर रहा है, तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, तलाक देना चाह रहा है, तो ये दलील हाजत आ गई, मालूम हुआ इसको हाजत है। रगबत के जमाने के बावजूद इसका तलाक पर पेशकदमी करना, मालूम हुआ इसको हाजत है, लिहाजा ये तलाक दे सकता है। फिर अगला तोहर आएगा, ये फिर रगबत के नया होने का जमाना है, लेकिन फिर भी खावन जो है तलाक पर इकदाम कर रहा है, तलाक देना चाह रहा है, मालूम हुआ इसको तलाक की हाजत है। बात समझ में आ रही है? तो अब वो बयान कर रहे हैं, कहते हैं वही अफिल मुफर्रक अलल अतहारी साबितातुन, और ये जो हाजत है फिल मुफर्रकी, वो तलाकें जिनको जुदा जुदा कर दिया गया है, अलल अतहारी तोहरों पर, साबितातुन उनमें साबित है। बात क्या चल रही थी कि एक तोहर में एक ही तलाक से हाजत पूरी हो गई, लिहाजा दो या तीन नहीं दे सकता, जो चीज जरूरत की वजह से साबित हो वह बकदरे जरूरत होगी, और एक से छुटकारा हो रहा है तो दो या तीन की इजाजत नहीं होगी एक तोहर में। लेकिन वो तलाकें जो तोहरों के अंदर जुदा जुदा हैं, एक तोहर में एक है, दूसरे में दूसरी है, तीसरे में तीसरी है, वो जो मुफर्रक तलाकें हैं, जुदा जुदा तलाकें हैं तोहरों के अंदर, उनके अंदर हाजत साबित है, हम बतला चुके हैं
जी।
उनमें कैसे हाजत साबित है? कहते हैं दलील हाजत की तरफ नजर करें। हमने क्या कहा था? हाजत का तो पता नहीं चल सकता, दलील हाजत को देखेंगे, और दलील हाजत सब में मौजूद है। रगबत के जमाने के बावजूद वो किस पर इकदाम कर रहा है? तलाक पर। मालूम है इसको हाजत है, पता चल गया। जब हाजत है तो तलाक इसके लिए क्या हो गई? मुबाह हो गई, ये तलाक दे सकता है। अगले तोहर में फिर इसी तरह है, फिर दे सकता है। अगले तोहर में फिर इसी तरह है, तो तीसरी भी दे सकता है। तो वहां हाजत है, लेकिन एक तोहर में एक से ज्यादा की हाजत नहीं है भाई। यह माना है वही अफिल मुफर्रक अलल अतहारी साबितातुन, और यह हाजत जो है उन तलाकों में जो मुफर्रक हैं, जिनको जुदा जुदा किया गया है, अलल अतहारी तोहरों पर, यानी हर तोहर में एक एक तलाक है, तो ये जो तोहरों पर तीन तलाकों को अलग अलग किया गया है, उनमें यह जो हाजत है साबितातुन, यह हाजत साबित है, नजरन इला दलीलिहा, दलील हाजत की तरफ नजर करते हुए। किसकी तरफ? दलील हाजत तो मौजूद है, वो रगबत के जमाने के बावजूद वो तलाक देना चाह रहा है, मालूम है इसको हाजत है भाई। वल हाजतु फी नफ्सिहा बाकियतुन फअमकना तस्वीरु दलील अलैहा, वल हाजतु फी नफ्सिहा बाकियतुन, और हाजत अपनी जात के एतबार से बाकी है, फअमकना तस्वीरु दलील अलैहा, तो लिहाजा मुमकिन है दलील की सूरत बनाना अलैहा, उस हाजत पर। ये फिर एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि आपने हमें कहा कि बाद अकात इंसान को छुटकारे और खुलासी की हाजत होती है, तो इस हाजत की वजह से खावन के लिए तलाक देना मुबाह होगा और जायज होगा। तो ये हाजत तो एक ही तलाक से पूरी हो जाती है, वो तीन भी देगा तो जुदाई आ जाएगी, और एक देगा तो भी जब औरत इद्दत गुजारेगी तो जुदाई आ जाएगी, तो निकाह तो टूट जाएगा, हाजत तो खत्म हो गई भाई। तो साहिब हिदाया जवाब दे रहे हैं कि ये एक तलाक देने के बावजूद भी हाजत अपनी जात के एतबार से बाकी हो, ये मुमकिन है। एक तलाक ने क्या काम करना है? इद्दत के बाद निकाह को तोड़ देना है, लेकिन इसके बावजूद फी नफसिहा हाजत बाकी हो, यह मुमकिन है। फिर भी इंसान को जरूरत हो दूसरी और तीसरी देने की, भाई वो कैसे मुमकिन है? एक ने भी निकाह तोड़ना है और तीन ने भी निकाह तोड़ना है, तो फिर कैसे हाजत बाकी है जब एक से जरूरत पूरी हो रही है? आप फिर भी कह रहे हैं दूसरी और तीसरी दे सकता है, एतराज समझ में आ रहा है? तो जवाब देंगे साहिब हिदाया कि भाई एक तलाक देने के बाद भी हाजत बाकी हो सकती है। हाजत बाकी किस तरह? कि भाई ये औरत इतनी बद अखलाक, इतनी बदजुबान है कि खावन चाहता है कि मैं इससे ऐसी जान छुड़ाऊं कि दोबारा निकाह की कोई सूरत ही ना रहे। अगर मैंने सिर्फ एक तलाक देकर जान छुड़ा ली तो हो सकता है फिर कुछ दिनों के बाद मेरी इसकी तरफ रगबत शुरू हो जाएगी और मैं फिर कहीं दोबारा इसे निकाह न कर लूं। हालांकि ये औरत तो ऐसी है इसके साथ तो थोड़ा वक्त गुजारना भी मुश्किल है, तो लिहाजा खावन अभी भी मोहताज है कि वो तीन तलाकें देकर पूरे तौर पर अपने आप को इस औरत से जुदा कर दे ताकि फिर कभी उसकी तरफ जहन मुतवज्जे ही ना हो, क्योंकि फिर वहां निकाह की कोई सूरत ही नहीं रहेगी जब तीन तलाकें दे देगा। भाई बात समझ में आ गई, मालूम हुआ एक तलाक से निकाह तो टूट जाएगा लेकिन फिर भी इद्दत के बाद दोबारा निकाह की गुंजाइश तो मौजूद रहेगी, और खावन तो क्या चाहता है कि दोबारा निकाह की भी गुंजाइश ना रहे, मैं इस औरत से इतना तंग हूं कि दोबारा मैं इसे निकाह करना ही नहीं चाहता किसी सूरत में भी, तो लिहाजा वो तीन के जरिए जान छुड़ाना चाहता है ताकि मेरा जहन दोबारा इसकी तरह मुतवज्जे ही ना हो। भाई तो फी नफसीहा, एक तलाक देने के बाद भी हाजत बाकी है या नहीं, हाजत अब भी बाकी है भाई, ये माना है। वल हाजतु फी नफसीहा बाकियतुन, और हाजत जो है वो अपनी जात के एतबार से अभी भी बाकी है, एक तलाक दे दी है लेकिन हाजत अभी भी बाकी है कि पूरे तौर पर वो जान छुड़ाना चाहता है। फअमकना तस्वीरु दलीली अलैहा, लिहाजा मुमकिन है उस पर दलील की सूरत बनाना, अलैहा उस हाजत पर, लिहाजा उस हाजत पर दलील की सूरत बनाना मुमकिन है जो सूरत हमने बयान कर दी। भाई वल मशरूयत फी जाती ही मिन हैसु इन्नहु इजालतु रिक्क ला तुनाफिल हजरा लिमानम फी गैरिही व हुवा मा दकरनाहु। इमाम शाफी रहमहुल्लाह को जवाब दे रहे हैं, पीछे इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया था वल मशरूयत ला तुजामिउल हजरा, मशरूयत जो है वो ममनूयत के साथ जमा नहीं हो सकती, जो चीज मशरू है वो ममनू नहीं और जो ममनू है वो मशरू नहीं, तो जब तलाक मशरू है तो आप इसको ममनू करार नहीं दे सकते। भाई तो उसका आप जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वल मशरूयत फी जाती ही मिन हैसु इन्नहु इजालतु रिक्क ला तुनाफिल हजरा, और मशरूयत फी जाती ही, और तलाक का मशरू होना फी जाती ही अपनी जात के एतबार से मिन हैसु इन्नहु इजालतुर रिक्की, इस हैसियत से कि यह इजाला रिक्कियत है, ला तुनाफिल हजरा यह मुमानात के मुनाफी नहीं, लिमानन फी गैरिही, माना का यहां तर्जमा कर लें इल्लत और सबब के, लिमानन फी गैरिही एक ऐसी इल्लत की वजह से जो इसके गैर में पाई जाए। हम कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, जो चीज मशरू हो ममनू नहीं हो सकती, मशरूयत ममनूयत के साथ जमा नहीं हो सकती। हम कहते हैं नहीं, मशरूयत ममनूयत के साथ जमा हो सकती है, एक चीज अपनी जात के एतबार से मशरू हो और गैर के एतबार से गैर मशरू हो ममनू हो, यह हो सकता है, एक चीज अपनी जात के एतबार से मशरू हो लेकिन गैर के एतबार से ममनू हो, यह हो सकता है। जैसे पीछे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी बतलाया था कि हैज के अंदर तलाक देना क्यों ममनू है, तत्वील इद्दत की वजह से कि औरत पर इद्दत लंबी हो जाएगी, तो देखा वहां पर भी तलाक अपनी जात के एतबार से तो मशरू थी लेकिन तत्वील इद्दत के एतबार से तलाक गैर मशरू थी, तो देखा मशरूयत के साथ ममनूयत जमा हो गई, एक चीज अपनी जात के एतबार से मशरू हो लेकिन गैर की वजह से ममनू हो। इसी तरह वो तोहर जिसके अंदर खावन सोहबत कर लेता है उसके अंदर भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तलाक गैर मशरू है, तवज्जो है, एक तोहर उसमें खावन ने सोहबत कर ली है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं इस तोहर में तलाक ममनू है, तो उन पर एतराज होता है कि आपने तो कहा था तलाक मशरू है तो ये ममनू कैसे हो गई, तो उसका वो क्या जवाब देते हैं कि ये तलाक अपनी जात के एतबार से तो मशरू है लेकिन चूंकि इस तोहर में बीवी से सोहबत कर ली है तो तलाक देगा तो बीवी पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं इद्दत किससे शुमार करूं, है से शुमार करूं या अगर मैं हामिला हो चुकी हूं तो हमल से शुमार करूं, तवज्जो है, तो जिस तोहर में सोहबत कर ले उसके अंदर तलाक देगा तो औरत पर इद्दत मुश्तबे हो जाएगी जी। तो मालूम हुआ वहां पर भी तलाक अपनी जात के एतबार से मशरू है लेकिन इद्दत के मुश्तबे होने की वजह से गैर मशरू है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे जो चीज मशरू हो वो ममनू नहीं हो सकती, तो हम क्या जवाब देते हैं कि एक चीज अपनी जात के एतबार से मशरू हो लेकिन गैर की वजह से ममनू हो, यह हो सकता है। और याद रखो ये जो तलाक है ना इसमें इजाला रिकियत है, रिक गुलामी को कहते हैं, रिक किसे कहते हैं गुलामी को, ये याद रखो, ये जो निकाह है इसमें भी औरत के लिए रिकियत वाला माना है। औरत गुलाम तो नहीं बनती, लेकिन कुछ ना कुछ गुलामी का असर आ जाता है, खावंद की पाबंद हो जाती है ये औरत, खावंद की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती भाई। तवज्जो है, तो इसमें गुलामी तो नहीं लेकिन गुलामी का कुछ असर जरूर आ जाता है। तो लिहाजा तलाक ये इस गुलामी को दूर करना है, खावन तलाक देगा तो औरत से गुलामी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा तलाक के अंदर इजाला रिकियत है, गुलामी का खत्म करना है, यानी गुलामी के असर को खत्म करना है, तो बई एतबार तलाक मशरू है, जायज है। किसी जात से भी गुलामी को खत्म करना जायज है, मुबाह है, मशरू है। गुलाम को आजाद करना क्या है? मशरू है, बल्कि बड़े अजर सवाब का बाइस है। तो लिहाजा इजाला रिकियत जो है इसकी तरफ नजर करते हुए तलाक मशरू है, लेकिन किसी गैर की तरफ नजर करते हुए, किसी गैर की वजह से फिर भी तलाक ममनू हो सकती है। तो यह माना है वल मशरूयतु फी जाती ही, और तलाक का मशरू होना अपनी जात के एतबार से, मिन हैसु इन्नहु इजालतुर रिकी, अपनी जात के एतबार से, इस हैसियत से कि तलाक तो किस चीज का नाम है? इजाला रिकियत का नाम है, गुलामी खत्म करने का नाम है। तवज्जो है, अपनी जात के एतबार से तलाक किस चीज का नाम है? इजाला रिकियत का नाम है, इसलिए यह मशरू है, लेकिन किसी गैर की वजह से यह फिर भी ममनू हो सकती है। तो कहते हैं वल मशरूयतु फी जाती ही, और तलाक का मशरू होना अपनी जात के एतबार से, मिन हैसु इन्नहु इजालतु रिक़, इस हैसियत से कि यह अपनी जात के एतबार से गुलामी को दूर करना है। ला तुनाफिल हजरा, यह मशरूयत जो है यह मुनाफी नहीं है अल हजरा मुमानअत के, लिमानन फी गैरिही, किसी ऐसे सबब की वजह से, फी गैरिही जो इसके गैर में पाया जा रहा है। तलाक तो अपनी जात के एतबार से मशरू है क्योंकि यह इजाला रिकियत है, लेकिन गैर की वजह से हो सकता है यह ममनू हो। तवज्जो है, यह माना है कि तलाक का मशरू होना ला तुनाफिल हजरा, यह मुमानअत के मुमनाफी नहीं कि मशरूयत भी हो और साथ क्या हो, मुमानअत भी आ जाए। लिमानन फी गैरिही, एक ऐसे सबब की वजह से, फी गैरिही जो इस तलाक के अलावा में पाया जा रहा है। वह हुआ मा ज़करनाहू, और वो जो सबब है वो है जो हमने जिक्र कर दिया। वो क्या है? वो सबब है जो हमने जिक्र कर दिया कि तलाक देगा तो निकाह टूटेगा, और निकाह की जो दुनियावी और उखरवी मसलहतें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो तलाक ही जाती ही मशरू है, लेकिन वो दुनियावी और उखरवी मसलहतों के खत्म होने के एतबार से ये ममनू है भाई। वकदा इका उसेन फी तोहरिल वाहिदी बिदातुन लिमा कुलना, और इसी तरह दो तलाकों को वाके करना एक ही तोहर के अंदर यह भी बिदात है, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कह दिया कि हाजत एक तलाक से पूरी हो रही है एक तोहर में, लिहाजा दो या तीन की जरूरत नहीं। तो यह माना है वकदा इका उसेन फी तोहरिल वाहिदी, और इसी तरह दो तलाकों का वाके करना एक ही तोहर में बिदातुन, यह भी बिदात है, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कह दिया। वक्त तलफतिर रिवायत फिल वाहिदतिल बाइनती, अच्छा भाई मैंने आपको बतलाया था कि अगर तलाक बाइन दे देता है कोई शख्स अपनी बीवी को, तलाक बाइन, तो बकौले अजहर यह भी बिदात है। बकौले जो मैंने आपको लिखवाया था, तलाक बाइन बकौले अजहर बिदअत है, तो अब उसको बयान करने लगे। तो कहते हैं वक्त तलफतिर रिवायत फिल वाहिदतिल बाइनती, और एक तलाक बाइना जो है उसके अंदर रिवायात मुख्तलिफ हैं। काल फिल असली, असल से मुराद है मबसूत भाई। काल फिल असली, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी किताब मबसूत में फरमाते हैं, इन्नहु अख्ता सुन्नता, कि तलाक बाइन देने वाले ने सुन्नत से खता की है, इसने सुन्नत तरीके से खता की है, यह सुन्नत से चूक गया है। लियन्नहु ला हाजत इला इस बात सिफतिन ज़ाइदतिन फिल खलासी, इसलिए कि कोई हाजत नहीं है इला इस बात सिफतिन ज़ाइदतिन कि उसको जायद सिफत साबित की जाए फिल खलासी, छुटकारे में। तलाक में तो असल मुमानअत है, छुटकारे की हाजत की वजह से तलाक जायज हो जाती है, तो जब यह तलाक रजई के जरिए यह हाजत पूरी हो रही है तो फिर एक वस्फ जायद यानी तलाक बाइन देने की कोई हाजत नहीं है, लिहाजा यह भी बिदअत है। तो इसे कहा इन्नहु अख्ता सुन्नत, इसने सुन्नत से खता की है। लिअन्नहु ला हाजत इला इस बात सिफतिन जायदतिन फिल खलासी, इसलिए क्योंकि कोई हाजत नहीं है कि छुटकारे में किसी जायद सिफत को साबित किया जाए। वही अल बैनूनत, और वो कौन सी सिफत है? बैनूनत यानी जुदाई वाली सिफत। एक तो वैसे कहता खावन बीवी को मैं तुम्हें तलाक देता हूं, लेकिन साथ वो क्या मिला रहा है? बाइन, कि मैं तुम्हें तलाके बाइन देता हूं। तो ये बैनूनत और ये जो जुदाई वाली सिफत इसने तलाक के लिए बढ़ा दी, इसकी कोई हाजत नहीं थी। तो कहते हैं लिअन्नहु ला हाजत इला इस बात सिफतिन जाइदतिन फिल खलासी, इसलिए क्योंकि कोई हाजत नहीं है कि छुटकारे में जायद सिफत को साबित किया जाए। वही अल बैनूनत, और वो जायद सिफत बैनूनत यानी जुदाई है। वफी रिवायत इस ज्यादात, और ज्यादात की रिवायत में है कि अन्नहु ला युकरहु लिल हाजति इलल खलासी नाजिजन, कि यह भी मकरूह नहीं है लिल हाजति इलल खलासी, छुटकारे की हाजत की वजह से नाजिजन। नाजिज का माना है मुकम्मल यानी फौरी फौरी। भाई तलाके रजई देगा, उसमें तो रुजू हो सकता है इद्दत के बाद, जब इद्दत पूरी हो जाएगी, अब औरत बाइना हो गई, निकाह पूरे तौर पर टूट गया। लेकिन कोई शख्स फौरी छुटकारा चाहता है, फौरी छुटकारा चाहता है कि मैं फिर रुजू भी ना करूं ताकि इसकी तरफ, तो वो तलाके बाइन का मोहताज हुआ, तो वो लिहाजा तलाके बाइन की भी इजाजत होगी। तो कहते हैं वो फिर रिवायत ज्यादात, और ज्यादात की रिवायत में है। मैंने आपको बतलाया था भाई जाहिर रिवायत कितनी किताबें हैं? छह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की छह किताबें हैं जिनको जाहिर रिवायत कहते हैं, मबसूत, ज्यादात, जामे सगीर, जामे कबीर, सियर सगीर और सियर कबीर। तो देखो इसी में मबसूत के अंदर आया तलाके बाइन देना, यह क्या है? इसने सुन्नत में गलती की है, सुन्नत में खता की है। और ज्यादात में क्या आया? तो कहते हैं वफी रिवायत ज्यादाती, और ज्यादात की रिवायत में है अन्नहु ला युकरहु, कि ये तलाके बाइन भी मकरूह नहीं है लिल हाजति इलल खलासी नाजिजन, बवजह मुकम्मल छुटकारे की हाजत की वजह से, कि कोई शख्स मुकम्मल या फौरी छुटकारा चाहता है। आगे देखिए वसुन्नतु फी तलाक मिन वजहैनी, और सुन्नत जो है तलाक में वो दो एतबार से है, सुन्नतुन फिल वक्त वसुन्नतुन फिल आददी, एक तो वक्त के अंदर सुन्नत वसुन्नतुन फिल आददी, और दूसरी आदद के अंदर सुन्नत। वक्त के अंदर क्या सुन्नत है? कब तलाक देनी चाहिए? तोहर के अंदर, और कौन सा तोहर? जिसमें सोहबत न की हो। और आदद के अंदर भी एक सुन्नत है, क्या? कितनी तलाकें एक वक्त में दे? एक ही दे, यही बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं वह सुन्नतु फी तलाक मिन वजहैनी, और सुन्नत जो है तलाक में दो एतबार से है, सुन्नतुन फिल वक्त, एक सुन्नत फिल वक्त है, वह सुन्नतुन फिल आददी, और एक आदद में सुन्नत है। फसुन्नतु फिल आददी यस्तवी फी हल मदखूल बिहा वगैर उल मदखूल बिहा, सुन्नत फिल आदद यानी सुन्नत फिल आदद क्या है? एक तलाक। कहते हैं इसमें मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों बराबर हैं। मदखूल बिहा यानी जिससे खावन सोहबत कर चुका है, उसको भी सुन्नत तलाक देना चाहता है, तो एक तोहर में एक ही तलाक दे। और गैर मदखूल बिहा जिससे खावन ने अभी सोहबत नहीं की, उसको तलाक देना चाहता है, तो उसमें भी सुन्नत फिल आदद क्या है? एक ही तलाक दे, वो एक ही तलाक से बाइना हो जाएगी, और उस पर इद्दत भी नहीं है भाई। तो कहते हैं फसुन्नतु फिल आददी, तो आदत के अंदर जो सुन्नत है, यस्तवी फी हल मदखूल बिहा वगैर उल मदखूल बिहा, इसके अंदर मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों औरतें बराबर हैं। वकद जकर नाहा, और तहकीक हम इसको जिक्र कर चुके हैं कि एक तोहर में एक ही तलाक दे भाई। वसुन्नतु फिल वक्त यस्बुतु फिल मदखूल बिहा खासतन, और सुन्नत फिल वक्त, सुन्नत फिल वक्त क्या है? किस वक्त तलाक देना सुन्नत है? तोहर के अंदर। किस में? तोहर के अंदर। कहते हैं वह सुन्नतु फिल वक्ती, और वक्त के अंदर जो सुन्नत है, यस्बुतु फिल मदखूल बिहा खासतन, ये मदखूल बिहा के बारे में ही साबित है खास तौर पर। वो जो गैर मदखूल बिहा है जिससे खावन ने भी सोहबत नहीं की, मैंने आपको बतलाया था, उसको तोहर में भी तलाक दे सकता है, उसको हैज में भी तलाक दे सकता है। तवज्जो है? तो मालूम हुआ यह सुन्नत फिल वक्त यह सिर्फ मदखूल बिहा के हक में है, जिसे खावन सोहबत कर चुका है उसे तोहर में तलाक दे, और वह तोहर भी ऐसा हो जिसमें सोहबत उसके साथ न की हो। तो कहते हैं वह सुन्नत फिल वक्त यसबुतु फिल मदखूली बिहा खासतन, और सुन्नत फिल वक्त जो है यह साबित होती है खास तौर पर मदखूल बिहा के हक में। वह हुआ अयुतलिकहा फी तोहरिन लम युजा मिहा फी ही, और वो ये कि खावन तलाक दे उस मदखूल बिहा को फी तोहरिन ऐसे तोहर में लम युजा मिहा फी ही जिसमें उसने उसके साथ सोहबत न की हो। लिअन अल मुरा दलीलुल हाजती, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसकी रियायत रखी जाएगी दलीलुल हाजती वो दलील हाजत है। वह वल इकदाम वाला तलाक फी जमानी तजद्दुदी रगबती, और वो पेशकदमी करना है तलाक पर रगबत के नए होने के जमाने में, और वो जमाना कौन सा है? कहते हैं वह हुआ तोहरुल खाली अनिल जिमाई, वह तोहर है जो जिमा से खाली हो। फिर देखिए इसको कहते हैं लिअन्नल मुराआ दलीलुल हाजती, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसकी रियायत रखी जाएगी वो दलील हाजत है। भाई देखिए बात चल रही है सुन्नत फिल वक्त, तलाक के अंदर एक सुन्नत फिल वक्त है एक सुन्नत फिल आदत है। सुन्नत फिल आदत क्या है? एक ही तलाक दे दे, और इसमें मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों बराबर हैं, यानी दोनों को एक ही तलाक दी जाएगी। बात समझ में आ गई? और जबकि सुन्नत फिल वक्त जो है सिर्फ मदखूल बिहा के हक में साबित है, और उस वो भी किस वजह से? दलील हाजत की वजह से। उसकी इजाजत नहीं होगी खावन को, लेकिन किस वजह से? हाजत के, वो छुटकारे का मोहताज है। और छुटकारे का मोहताज वो कब होगा? कब हम कहेंगे कि इसको हाजत है? हाजत उसके लिए कब होगी? दलील हाजत की तरफ नजर करते हुए। दलील हाजत जब पाई जाएगी तो हम कहेंगे इसके लिए हाजत है। तो वो तोहर जिसमें सोहबत नहीं की वो रगबत के नया होने का जमाना है, और रगबत के नया होने के जमाने के बावजूद खावन जो है तलाक पर पेशकदमी कर रहा है, तलाक देना चाह रहा है। मालूम हुआ इसको क्या है? तलाक की हाजत है। और यह सिर्फ किसके हक में होगा? मदखूल बिहा के हक में। तवज्जो है, आपको आगे चलकर साहिब हिदाया बतलाएंगे कि गैर मदखूल बिहा को जब मर्जी तलाक दे दे, तोहर में दे दे चाहे हैज में। इमाम जुफर कहेंगे नहीं, गैर मदखूल बिहा को भी तोहर में तलाक देनी पड़ेगी। किसमें? क्यों? कहते हैं भाई क्योंकि तोहर यह रगबत के नया होने का जमाना है, और अगर हैज में तलाक देगा तो हैज में तो इंसान को तबान औरत से नफरत होती है, यानी सोहबत की तरफ दिल मुतवज्जे नहीं होता। और नीज वो तोहर जिसमें खावन सोहबत कर ले वहां भी खावन की ख्वाहिश पूरी हो गई, लिहाजा अब वो रगबत में कमी आ गई। तो लिहाजा ये हैज में या ऐसा तोहर जिसमें खावन सोहबत कर चुका है, यहां शरीयत ने तलाक की इजाजत नहीं दी, क्योंकि हो सकता है यह आरजी जो नफरत है इसकी वजह से तलाक दे रहा हो, हकीकतन इसको तलाक की हाजत नहीं, वैसे आरजी नफरत की वजह से तलाक दे रहा हो तो शरीयत ने इसलिए मना किया है। लेकिन जब ऐसा तोहर है जिसमें खावन ने भी सोहबत नहीं की और यह तो रगबत के नया होने का जमाना है, फिर भी खावन तलाक देना चाह रहा है, मालूम खावन को हाजत है, लिहाजा इसके लिए तलाक देना मुबाह हो जाएगा। तवज्जो है। तो मैं बात कर रहा था वो औरत जिसके साथ खावन ने भी सोहबत नहीं की, उसको हमारे नजदीक तोहर में भी तलाक दे सकता है खावन और हैज में भी, जिसके साथ अभी सोहबत नहीं की। इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, उसको भी तोहर में ही तलाक देना पड़ेगी, हैज में नहीं दे सकता, क्योंकि हैज तो नफरत का जमाना है, हैज तो नफरत का जमाना है। तो हो सकता है इस आरजी नफरत की वजह से तलाक दे रहा हो। तो आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि नहीं भाई, ये औरत वो है जिसके साथ खावन ने भी सोहबत ही नहीं की, जिसके साथ जब खावन ने इसके साथ अभी सोहबत ही नहीं की, तो इसके अंदर जो खावन की रगबत है वो बड़ी कामिल रगबत है, वो हैज का जमाना आने से भी वो रगबत खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसने अभी तक इस औरत से सोहबत ही नहीं की। नई बीवी है भाई, ये क्या है? जब नई बीवी है इससे अभी तक इसको अपना मकसूद ही नहीं हासिल हुआ, इसने अभी तक इसके साथ सोहबत ही नहीं की, तो लिहाजा इसके साथ तो रगबत बड़ी कामिल है, ये हैज वगैरह की वजह से भी काम नहीं होगी भाई। लिहाजा इसलिए गैर मदखूल बिहा के अंदर चूंकि रगबत बड़ी कामिल है, लिहाजा वो चाहे तोहर में तलाक दे चाहे हैज में दे, हर वक्त रगबत मौजूद है, लेकिन फिर भी ये तलाक देना चाह रहा है, मालूम हुआ इसको तलाक की हाजत है, दे सकता है। लेकिन वो औरत जिसके साथ सोहबत कर चुका है उसके साथ, उससे तो खावन ने अपना मकसूद हासिल कर लिया, वो तो सोहबत कर चुका है उसके साथ, लिहाजा अब उसको हैज के अंदर भी तलाक नहीं दे सकता और वो तोहर जिसमें सोहबत कर लिया उसमें भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि आरजी नफरत का जमाना है भाई
जी।
लेकिन जब ऐसे तोहर में तलाक दे रहा है जिसमें सोहबत नहीं की, मालूम हुआ इसको वाकई तलाक की हाजत है, ये वाकई इस औरत से छुटकारा पाना चाहता है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्न अल-मुराअ दलीलुल हाजती, और इसलिए क्योंकि वो चीज जिसकी रियायत रखी जाएगी दलीलुल हाजती, वो हाजत की दलील है। वह और वो हाजत की दलील क्या, दोबारा जिक्र कर रहे हैं, वह हुअल इक़दामु अला तलाक़ी फी ज़मानी तजद्दुदिर रग़बती, और वो तलाक पर पेशकदमी करना है उस जमाने के अंदर जो कि रग़बत के नया होने का जमाना है। वह हुअ तुहरुल खाली अनिल जिमा, और वो रग़बत के नया होने का जमाना वो तोहर है अल खाली अनिल जिमा, जो सोहबत और जिमा से खाली है। अम्मा ज़मानुल हैज़ी, बाकी हैज़ का जो जमाना है, फ़ज़मानुन नफ़रती, वो नफरत का जमाना है। किसका नफरत, क्या माना नफरत, मैं पहले बयान कर चुका हूं, यह माना नहीं कि औरत से नफरत हो गई है, माना यह है कि उस वक्त सोहबत के एतबार से जहन उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, क्योंकि शरअन भी है इसके अंदर सोहबत मना, और नीज तबअन भी इंसान की ख्वाहिश नहीं होती कि औरत से सोहबत करे जबकि औरत से हैज का खून जारी है भाई। तो मालूम हुआ यह क्या है, यह औरत से नफरत का जमाना है, यानी सोहबत के एतबार से। किस एतबार से सोहबत, कहते हैं अम्मा ज़मानुल हैज़ी फ़ज़मानुन नफ़रती, तो जो हैज का जमाना है वो औरत से नफरत का जमाना है। वह बिल जिमा मर्रतन फी तोहरी, और नीस वो तोहर जिसमें खावन सोहबत कर ले, जब सोहबत कर लेगा तो खावन की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, तो उस वक्त भी फिर अब उसकी औरत में रग़बत बाकी न रहेगी। तो कहते हैं वह बिल जिमा मर्रतन फी तोहरी, और एक मर्तबा जिमा कर लेने से तोहर के अंदर तफ्तुरु रग़बतु, रग़बत कम हो जाएगी। फतरा यफ्तुर का माना कम होना। तो कहते हैं वह बिल जिमा मर्रतन फी तोहरी, और तोहर के अंदर एक मर्तबा जिमा कर लेने से तफ्तुरु रग़बतु, रग़बत कम हो जाएगी। तो लिहाजा इस वक्त तलाक न दे, कहीं ऐसा ना हो कि आरजी आदम रगबत की वजह से यह तलाक दे रहा हो। वह गैर उल मदगूली बिहा यू तल्लिकुहा फी हालती तोहरी वल हैजी, और गैर मदगूल बिहा बीवी जो है उसको खावन तलाक दे सकता है तोहर की हालत में भी और हैज की हालत में भी। खिलाफन ले जुफर रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के। वह यकी सुहा अलल मदगूली बिहा, वो इस गैर मदगूल बिहा को कियास करते हैं मदगूल बिहा पर, और मदखूल बिहा के अंदर हैज की हालत में तलाक जायज नहीं, तो गैर मदखूल बिहा में भी हैज की हालत में तलाक जायज नहीं होगी। वलाना हमारी दलील यह है कि अन्न रग़बत फी गैर मदखूली बिहा सादिकतुन, कि गैर मदखूल बिहा के अंदर जो मर्द की रग़बत है सादिकतुन, वो सच्ची है, कामिल है। ला तकिल्लु बिल हैज़ी, यह हैज की वजह से भी कम नहीं होती। मा लम यहसुल मकसूदुहु मिनहा, जब तक खावन का उसे मकसूद हासिल नहीं हो जाता, यानी जब तक खावंद इसे सोहबत नहीं कर लेता। वफिल मदखूल बिहा तथा जद्दू बि तोहरी, और मदखूल बिहा के अंदर जो है वह रगबत नहीं होती है बि तोहरी, किसकी वजह से, तोहर की वजह से। तो दोनों में फर्क है, एक में रगबत तोहर की वजह से नहीं होती है और दूसरी के अंदर हर वक्त रगबत है। बात समझ में आ गई? काला व इदा कानतिल मर अतुल्ला तहीजु मिन सिगरिन औ किबरिन। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदा कानतिल मर अतुला तहीज उमिन सिगरिन औ किबरिन। अच्छा भाई, अब मसला आया वो औरत जिसको हैज नहीं आता, या तो वो सगीरा है ना बालिगा है, अभी बालिग ही नहीं हुई, या इसी तरह वो औरत आयसा है भाई, आयसा, आयसा यानी ना उम्मीद, ना उम्मीद। और आयसा याद रखो, ये जो औरतें हैं इनको जब तक हैज आता रहता है इनसे औलाद मुमकिन है, लेकिन 50-55 साल की उम्र में जाकर हैज बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद औरत से औलाद नहीं हो सकती भाई, तवज्जो है। तो अब अगर एक सगीरा है जिसे हैज नहीं आता, या एक आयसा है 50-55 साल से जायद उम्र की औरत है, तो अब इनको अगर कोई तलाक सुन्नत देना चाहे तो कैसे तलाक सुन्नत देगा, तवज्जो है। तो बताएंगे कि इनके अंदर एक महीना एक हैज के कायम मकाम है, लिहाजा इनको कोई तलाक सुन्नत देना चाहता है, तीन तलाकें देना चाहता है, तो एक एक महीने के वक्फे के साथ तीन तलाकें दे दे, तो ये तलाक सुन्नत हो जाएगी। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वहीदा कानतिल मर अतुल्ला तहीज उमिन सिगरिन औकी बरिन, कि अगर औरत ऐसी है कि उसको हैज नहीं आता सगीरा होने की वजह से औकी बरिन या कबीरा होने की वजह से, यानी वो आयसा है या इसी तरह हामिला है, एक औरत हामिला है और उसको खावन तलाक देना चाहता है, और कौन सी तलाक देना चाहता है, तलाक सुन्नत, कि मेरी से मुकम्मल जान छूट जाए, तो उसमें उसमें भी यही है कि एक महीना एक हैज के कायम मकाम है, तो एक एक महीने के बाद तलाक देता चला जाए और इस तरह तीन तलाकें पूरी हो जाएंगी और तलाक सुन्नत तरीके से हो जाएगी भाई। तो कहते हैं अगर वही जाकान अतिल मर अतुल्ला तहीज उमिन सिगरिन औकीबरिन, और अगर औरत जो है ऐसी है कि उसको हैज नहीं आता सगीरा होने की वजह से या कबीरा होने की वजह से, यानी आयसा है, फअराद अयुतल्लिकहा सलासन लिसुन्नति, तो खावन ने यह इरादा किया कि उसको तीन तलाकें दे दे, लिसुन्नति सुन्नत तरीके पर, तल्लकहा वाहिदतन, तो खावन क्या करेगा उसको एक तलाक दे देगा, फैदा मसा शहरुन तल्लकहा उखरा, फिर जब एक महीना गुजर जाए तो उसको दूसरी तलाक दे दे, इस तरह तीन पूरी कर ले, लिअन्न शहर फी हक़िही मक़ाइम मक़ाम अल-हैज़, इसलिए क्योंकि महीना जो है इन दोनों के हक में हैज के कायम मकाम है, यानी सगीरा और कबीरा इनके हक में हैज के कायम मकाम है। काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल्ला यइसना मिनल महीज़ी इला अन काला वल्ला लम यहिज़ना, भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्ला यइसना मिनल महीज़ी, और वो औरतें जो हैज से मायूस हो जाएं, यानी जिनको हैज नहीं आता, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, इनिर तब तुम, अगर तुम्हें शक हो उनकी इद्दत के बारे में, यानी तुम उसे शुमार करना चाहते हो, तो फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरीन, तो उनकी इद्दत तीन माह है, वल्लाई लम यहिज़ना, और इसी तरह वो औरतें जिनको हैज नहीं आता यानी जो सगीरा हैं उनकी इद्दत भी तीन महीने है भाई। तो मालूम है वो औरतें जिनको हैज नहीं आता उनकी इद्दत अल्लाह ताला ने महीनों के साथ जिक्र फरमाई है, मालूम है एक महीना एक हैज के कायम मकाम है, तो यहां पर भी इनके अंदर भी अगर सुन्नत तरीके से तलाक देना चाहता है तो एक महीना एक हैज के कायम मकाम होगा भाई। तो कहते हैं लिअन्न शहर फी हक़िहिमा क़ाइमुम मक़ाम अल-हैज, इसलिए क्योंकि महीना इनके हक में हैज के कायम मकाम है। क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़, और वो औरतें जो हैज से मायूस हो गई हैं, इला अन क़ाला, यहां तक कि आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाई लम यहिज़ना, और वो औरतें जिनको हैज नहीं आता, वल इकामतु फिल हैज खासतन, और कायम करना जो है यह खास तौर पर हैज के हक में है। यहां अहनाफ के राजह कौल को जिक्र कर रहे हैं, बाज अहनाफ क्या कहते हैं, यह जो एक महीना है यह हैज और तोहर दोनों के कायम मकाम है, हैज और तोहर दोनों के कायम मकाम है, लेकिन साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि नहीं, राजह यही है कि ये जो महीना है ये हैज के कायम मकाम है खास तौर पर। याद रखो औरतों के अंदर हैज के दिन भी मुकर्रर होते हैं और तोहर के दिन भी मुकर्रर होते हैं। मसलन एक औरत है, उसको हर महीने पांच दिन हैज आता है और तेईस दिन मसलन उसको तोहर रहता है, ये 28-29 दिन, यानी ये दायरा उनका चलता रहता है, तकरीबन 28-29 दिन का दायरा होता है। तवज्जो है, 28 या 29 दिन, जिसमें एक तोहर भी आ जाता है और एक हैज भी। मसलन एक औरत का तोहर है 23 दिन और हैज है 5 दिन, तो हर महीने इसी तरह होगा, हर महीने 23 दिन तोहर और 5 दिन हैज, और बाद औकात फिर हैज बदलता है तो हम कहेंगे इसकी आदत बदल गई है, औरत की आदत, लेकिन उमूमन एक ही आदत चलती रहती है, इल्ला ये कि कोई बीमारी वगैरह आ जाए फिर आदत बदलती है। तो अब देखो ये 28-29 दिन के अंदर तो तोहर भी गुजर जाता है और हैज भी गुजर जाता है, तो बाज उलमा अहनाफ फरमाते हैं कि ये जो एक महीना है ये तोहर और हैज दोनों के कायम मकाम है, लेकिन राजह क्या है, साहिब हिदायत तरजीह दे रहे हैं कि यह महीना खास तौर पर हैज के कायम मकाम है, और क्यों हैज के कायम मकाम है उसकी भी दलील बतलाएंगे। वजह यह याद रखो, जब कोई शख्स नई बांदी का मालिक बनता है, मसलन खरीद ली या किसने तोहफा दे दी, तो खरीदार पर वाजिब है कि एक हैज इंतजार करे, फौरन बांदी के साथ वह सोहबत नहीं कर सकता, उसके लिए हराम है सोहबत करना, यहां तक कि एक हैज गुजार ले बांदी इसके पास। जब एक हैज गुजर जाएगा पता चल जाएगा कि बांदी पिछले मालिक से हामिला नहीं है, अब इस नए मालिक के लिए सोहबत जायज हो जाएगी। तो ये इसको इस्तेबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तेबरा। इस्तेबरा यानी रहम की बराअत को तलब करना, रहम की सफाई को तलब करना। तो नया मालिक एक हैज इंतजार करेगा सोहबत से पहले इस्तेबरा के तौर पर, यानी रहम की सफाई करवाएगा। क्या करेगा? रहम की सफाई, ताकि पता चल जाए कि इस औरत का रहम साफ है, कहीं यह हामिला तो नहीं साबका मालिक से। अब यह इस्तेबरा एक हैज का होता है। अगर ऐसी औरत है जिसको हैज आता ही नहीं तो बिल इतफाक अहनाफ के हां वहां इस्तेबरा महीने के साथ होगा। आयशा है, औरत क्या है? बांदी आयशा है, बड़ी उम्र वाली है। अब इसको हैज तो आता नहीं, तो फिर ये एक महीना हैज के कायम मकाम हो जाएगा। एक महीने तक मालिक सोहबत नहीं कर सकता, जब एक महीना गुजर जाए फिर मालिक सोहबत कर सकता है जी। तो देखो इस्तेबरा के अंदर महीने को हैज का कायम मकाम किया गया है, तो लिहाजा यहां पर भी महीने को हैज का कायम मकाम करार देंगे, हैज और तोहर दोनों का कायम मकाम करार नहीं देंगे। दलील समझ में आ गई? तो कहते हैं वल इकामतु फिल हैज खासतन, और ये जो महीने को कायम मकाम करना है फिल हैज, ये हैज में होगा खासतन, खास तौर पर। हत्ता युकद्दरुल इस्तिबरा, यहां पर भी यह हत्ता नसब नहीं देगा, यानी हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा। मैंने आपको बतलाया कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं, यानी हत्ता के बाद अन के मुकद्दर होने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो यह कि वो हत्ता का जो माबाद है वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह है कि वो हत्ता जो है सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, यानी माकबल सबब हो माबाद के लिए, या माबाद जो है वो गाया हो माकबल के लिए, तो फिर ही हत्ता नसब देगा। तो यहां पर ये शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा युकद्दरु पर रफा पड़ेंगे। तो कहते हैं हत्ता युकद्दरु लिस्तिबरा उफी हक्किहिमा, यहां तक कि इस्तिबरा मुकरर किया जाएगा इन दोनों के हक में भी शहरी महीने के साथ। वह हुआ बिल हैज इला बित्तोहरी, और इस्तिबरा तो हैज के साथ होता है, तोहर के साथ नहीं होता। तो लिहाजा यहां पर भी यह महीना हैज का कायम मकाम होगा। सुम्मा इनकान तलाक फी अव्वली शहर युअतबरु शुहूर बिल अहिल्लति, फिर अगर ये जो तलाक दी थी ये अव्वल शहर में दी थी। भाई देखिए, तलाक सुन्नत की बात चल रही है, खावन तलाक सुन्नत देना चाहता है यानी तीन तलाकें देना चाहता है अलग अलग तोहरों में, लेकिन ये औरत वो है जो जिसको हैज आता ही नहीं, तो इसको फिर सुन्नत तलाक कैसे देंगे? तो बतलाया कि इनमें हर दो तलाकों के दरमियान एक महीने का फसल कर दे। ये एक महीना किसके कायम मकाम है? हैज के कायम मकाम है। अब अगर मसलन तलाक दी महीने के पहले दिन जिस शाम चांद नजर आया है, तो अगर इस वक्त तलाक दी है तो फिर तलाक सुन्नत महीने बाद देनी है, तो अगला चांद जब नजर आए तो इस वक्त दूसरी तलाक दे दे, फिर उससे अगला चांद जब नजर आए तो फिर तीसरी तलाक दे दे। यह है तलाक सुन्नत का तरीका। और अगर ये पहली तलाक जो खावन ने दी है तोहर के अंदर, ये महीने के दरमियान में है, दी तो तोहर में ही है लेकिन महीने के दरमियान में दी है, तो फिर इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं अब दिनों को शुमार करेंगे, तीस तीस दिन के फर्क के साथ अगली दोनों तलाकें देगा। अगर पहली तलाक जिस रात चांद नजर आया है उसी रात तलाक दी है, तो फिर ये इस्लामी महीने को शुमार करेंगे, चाहे ये महीना 30 दिन वाला हुआ चाहे 29 दिन वाला हुआ, यानी जब चांदों के हिसाब से तलाक दे रहा है तो फिर महीने को देखा जाएगा, चाहे महीना 29 दिन वाला हो चाहे 30 दिन वाला। लेकिन अगर महीने के दरमियान में किसी वक्त तलाक दी है, महीने के दरमियान किसी भी वक्त तलाक दे दी है, 10 तारीख को दी है, 15 को दी है, 20 को दी है, तो फिर इस सूरत में तीस तीस दिन का हिसाब रखेंगे, हर दो तलाकों के दरमियान कितना फर्क हो, पूरे तीस दिन का फर्क होना चाहिए। तो कहते हैं सुम्मा इनकाना तलाकु फी अव्वली शहरी, फिर अगर यह तलाक जो है अव्वले शहर यानी महीने के आगाज में हो तो युतबरु शुहूर बिल अहिल्लती, तो एतबार किया जाएगा महीनों का बिल अहिल्लती चांदों के जरिए, अहिल्ला जमा है हिलाल की, तो महीनों का एतबार किया जाएगा बिल अहिल्लती हिलालों के जरिए, वह इनकाना फी वस्ती ही, और अगर यह तलाक महीने के वस्त में थी, फबिल अय्यामी, तो फिर दिनों के जरिए, फी हक तफरीकी जुदाई के हक में, यानी तलाकों के अंदर तफरीक करनी है ना एक एक महीने की, तो फिर अब इस तफरीक के हक में दिनों का शुमार करेंगे। और यह मसला इत्तेफाकी है, इमाम साहब भी फरमाते हैं और साहिबैन भी, क्या मसला इत्तेफाकी है कि अगर चांद जिस रात नजर आया है उसी दिन तलाक दी है, उसी रात तलाक दी है, तो फिर इस्लामी महीने का एतबार करेंगे, चाहे वह 29 दिन वाला हुआ चाहे 30 दिन वाला हुआ। और अगर दरमियाने महीने के तलाक दी है तो फिर हर दो तलाकों में कितना फर्क होगा, पूरे 30 दिन का फर्क करना पड़ेगा। तो कहते हैं वह इनका नफी वस्त ही, और अगर यह तलाक महीने के वस्त में हुई, फबिल अय्याम फी हक तफरीक, तो फिर ये 30 दिन अय्याम के साथ होंगे, फी हक तफरीक जुदाई के हक में, यानी तलाक सुन्नत में तलाकों के दरमियान जो तफरीक की जाती है, जो फर्क किया जाता है, इसमें नई तवज्जो भाई, असल में आगे इद्दत को भी जिक्र करने लगे हैं। ये मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये जो खावन तलाक सुन्नत दे रहा है तीन तलाकें एक एक महीने के फर्क के साथ, ये हम इद्दत को शुमार कर रहे हैं या तलाकों में तफरीक कर रहे हैं? तलाकों में तफरीक कर रहे हैं, सुन्नत तरीके से तलाक देना चाहते हैं, तो ये इद्दत की बात नहीं चल रही, किसकी चल रही है बात, तलाकों में तफरीक की बात चल रही है। अब आगे इद्दत का मसला वो अलग जिक्र करेंगे कि इन औरतों को अगर तलाक दे दी जाए फिर इनकी इद्दत कैसे शुमार करेंगे। तो इन्होंने बतला दिया कि हमारे तीन अइमा फरमाते हैं जिस दिन महीने का आगाज हुआ है, चांद नजर आया है, अगर उस दिन से तलाक देना शुरू की है, उस दिन पहली तलाक दी है, तो फिर उस महीने जिस दिन अगला महीना शुरू होगा उस दिन फिर दूसरी तलाक दे, चाहे पिछला 29 ही दिन का क्यों ना हो, ये फिर भी क्या है, महीना पूरा हो चुका है, अगली तलाक दे दे, फिर अगला भी 29 दिन का हुआ तो उससे अगले को फौरन तीसरी तलाक दे दे। लेकिन अगर दरमियान वाले अय्याम के अंदर तलाक दी है, महीने के दरमियान में किसी वक्त तलाक दी है, और आप सुन्नत तरीके से दूसरी और तीसरी तलाक देना चाहता है, तो आप पूरे 30-30 दिन शुमार करें, हर दो तलाकों के दरमियान कितने दिन होने चाहिए, पूरे 30 दिन होने चाहिए, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए भाई, यह माना है। वह इनका नफी वस्त ही फबिल अय्यामी, और अगर यह तलाक महीने के वस्त में हुई, फबिल अय्यामी, तो इसको किसके साथ शुमार करेंगे, दिनों के साथ, यानी 30 दिन। लेकिन फी हक की तफरीकी, किस बारे में, तफरीक के हक में, यानी तलाकों के अंदर जो फर्क होना चाहिए, इद्दत की बात अभी नहीं, अब इद्दत की बात आगे कर रहे हैं। वफी हक इद्दत कजाली का आइंदा अभी हनीफत रहमला, और इद्दत के हक में भी इसी तरह है इमाम साहब के नजदीक, इद्दत के अंदर भी इसी तरह है, इमाम साहब फरमाते हैं अगर किस महीने की पहली तारीख को जिस दिन चांद नजर आया था उसी दिन खावंद ने तलाक दी थी, तो फिर अब औरत तीन महीने गुजारेगी, चाहे वो 29 वाले हों चाहे 30 वाले हों। और अगर महीने के बीच में खावन ने तलाक दी है और यह औरत इद्दत गुजारना चाहती है, तो अब 30-30 दिन गुजारेगी। तो जो मसला तफरीक में था वही मसला इद्दत में भी है इमाम साहेब के नजदीक, चाहे महीने के शुरू में तलाक दे, चाहे महीने के दरमियान में तलाक दे, तो चाहे तफरीक करना चाहे, चाहे इद्दत शुमार करना चाहे, दोनों का एक ही हुक्म है। लेकिन साहिबैन फर्क करते हैं, साहिबैन फर्क करते हैं, वो फरमाते हैं अगर महीने की पहली तारीख को तलाक दी है तो इद्दत अगर औरत शुमार करना चाहती है तो फिर वो उसी तरह महीने को शुमार करेगी, चाहे महीना 29 का हो चाहे 30 का, तीन महीने गुजार लेगी तो इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर दरमियान महीना के अंदर खामन ने तलाक दी है, तवज्जो है, फिर 30-30 दिन पूरे नहीं करने, बल्कि इस महीने के कितने दिन बाकी हैं वो शुमार कर लेगी, दरमियान वाले पूरे दो इस्लामी महीने शुमार कर लेगी, वो चाहे 29 के हुए चाहे 30 के हुए, और आखिरी महीने में से जो कमी है वो पूरी कर लेगी। मसलन खावंद ने 10 तारीख को तलाक दी है, किस तारीख को? 10 तारीख को तलाक दी है, तो मसलन इस महीने के 20 दिन या आगे गुजारती है इस महीने के, अगला पूरा इस्लामी महीना शुमार करे चाहे वो 30 का है चाहे 29 का, उससे अगला महीना भी पूरा इस्लामी महीना शुमार करे चाहे 29 का है चाहे 30 का, और आखिरी महीने में कितने दिन बाकी रह गए, पहले महीने में से कितने गुजार लिए थे? 20। भाई तवज्जो नहीं है। खावंद ने महीने के बीच में तलाक दी है, फर्ज करो खावंद ने 10 तारीख को तलाक दी, कब? 10 तारीख को, बाकी महीना औरत ने पूरा कर लिया, फर्ज करो ये 30 दिन का महीना था, कितना? तो मालूम हुआ औरत ने 20 दिन इसमें से गुजार लिए, कितने? 20 दिन गुजार लिए, और अगले दो इस्लामी महीने पूरे, और आखिरी महीने में से फिर औरत 10 दिन मजीद गुजार लेगी। तो देखो ये दरमियान वाले दो पूरे इस्लामी महीने आ गए, और 20 दिन पहले महीने के थे, तो आखिरी महीने में 10 दिन गुजार लेगी औरत। तफरीक के अंदर वो फरमाते हैं अगर महीने के दरमियान में खावंद ने तलाक दी है तो 30-30 दिन औरत गुजारेगी, लेकिन अगर इद्दत शुमार करनी है दरमियान में तलाक दी है तो फिर इद्दत कैसे शुमार करेंगे कि पहले महीने में से जितने दिन गुजर गए हैं आखिरी महीने में से वो दिन पूरे कर लेगी, और दरमियान वाले पूरे दो महीने। तो कहते हैं वफी हक इद्दती कजालिक आइंदा भी हनीफत रहमुल्लाह, और इद्दत के हक में भी इसी तरह है इमाम साहब के नजदीक, वाइंदा हुमा युकम मलुल अव्वल बिल अखीरी, और साहिबैन के नजदीक पहले महीने को पूरा कर लिया जाएगा बिल अखीरी आखिरी महीने के जरिए, यानी जितने दिन पहले महीने के गुजर चुके थे वो फिर आखिरी में से दोबारा पूरे कर लेगी। वल मुतवस्सितान बिल अहिल्लती, और दरमियान वाले दो महीने जो हैं बिल अहिल्लती वो हिलालों के जरिए शुमार कर लेगी। वही मसअलतुल इजाराती, और ये इजारात का मसला है। इजारात भाई किराए पर कोई चीज लेना, इजारात के मसले में इसी तरह इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है, इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। मसलन एक शख्स कोई जगह किराए पर लेता है कि एक मकान लेता है किराए पर रहने के लिए, मसलन 3 महीने 4 महीने 5 6 महीने जितने के लिए भी वो किराए पर लेता है, तो फिर इन महीनों का शुमार कैसे करेंगे? तो अगर महीने की पहली तारीख को उसने किराए पर मकान लिया है तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक इस्लामी महीनों के साथ यानी चांद के एतबार से ये महीने शुमार किए जाएंगे, जिस दिन चांद नजर आया है उसी दिन ये इजारे का अकद किया है कि मसलन मैं 5 महीने के लिए यह मकान किराए पर लेता हूं और चांद की पहली तारीख को यह अकद किया है, तो लिहाजा चांद के एतबार से ही ये महीने शुमार होंगे, चांद के एतबार से ही महीने शुमार होंगे, चाहे 29 दिन वाले हों चाहे 30 दिन वाले हों, तो इस तरह 5 महीने पूरे हो जाएंगे तो यह अकद पूरा हो जाएगा। तवज्जो है। तो इमाम साहब भी यही फरमाते हैं और साहिबैन भी यही फरमाते हैं अगर पहली तारीख को अक्दे इजारा किया कि चांदों का हिसाब करेंगे, और अगर महीने के दरमियान में अक्दे इजारा किया है मसलन 5 महीने का, तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं अब दिनों के साथ इसका हिसाब करेंगे, यानी हर महीना 30 दिन का शुमार करेंगे, अब चांद की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि ये अकद कब किया है? महीने के दरमियान में किया है, 3 तारीख को है, 5 को है 10 को है 15 को है या 20 को है जिस तारीख को भी है, लेकिन यकम तारीख को नहीं है, पहली तारीख को नहीं है, तो हर महीना 30-30 दिन का शुमार करेंगे। ये किसके नजदीक है? इमाम साहब के नजदीक, जब अकद दरमियान महीना में किसी वक्त किया हो। और जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, यहां पर भी ये जो दरमियान वाले महीने हैं वो चांद के शुमार होंगे, अलबत्ता जो पहला महीना है जो दरमियान महीने के अंदर आकद किया है उसके दिन शुमार कर लेंगे। मसलन आकद किया 15 को, किसको? 15 तारीख को आकद किया, तो इस महीने के 15 दिन किस में गुजर गए? आकद में गुजर गए। तवज्जो है। अगले महीने से फिर चांद के साथ शुमार करेंगे, और वो चांद के चाहे 29 वाले महीने हो चाहे 30 वाले, वो 4 महीने दरमियान वाले आ गए और 15 दिन पहले थे, तो आखिरी महीने के अंदर फिर 15 दिन बाकी हैं अभी, तो वहां 15 दिन मजीद पूरे कर लेगा, तो ये 30 दिन इस तरह पूरे कर लेगा। दरमियान वाले महीने चांद के हो गए और ये जो चंद अयाम शुरू और आखिर में हैं इनको मिलाकर 30 दिन पूरे कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये इख्तिलाफ इजारा के अंदर है इमाम साहेब और साहिबैन में, तो यहां पर भी इसी तरह इख्तिलाफ है इस इद्दत के मसले में भी। बात समझ में आ गई क्या कि अगर औरत को तलाक दी है महीने के बिल्कुल शुरू में और ये आयसा या सगीरा है तो इद्दत किस तरह शुमार करेंगे? बिल इत्तेफाक चांद के साथ ये इद्दत शुमार होगी। चांद के जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो इद्दत पूरी हो जाएगी, चाहे ये महीने 29 वाले हुए चाहे 30 वाले हुए। और अगर दरमियान महीने में तलाक दी है तो इमाम साहब के नजदीक अब दिनों का हिसाब करेंगे, हर महीना 30 दिन का शुमार करेंगे तो 90 दिन के बाद इस औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस पहले महीने में से जितने दिन रह गए थे वो आखिरी महीने में जाकर पूरे कर लेगी, और दरमियान वाले इस्लामी महीने शुमार होंगे वो चाहे 29 के हों चाहे 30 के हों। तो शुरू और आखिर वाले दिन मिलाकर वो 30 दिन अलग पूरे कर लेंगे और दरमियान वाले इस चांद के महीने शुमार कर लेंगे। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।